जब तक हकीकत की पहचान तुम लोग नहीं करोगे कि जो कुछ तुम्हें मिला और जो कुछ तुमने दिया, जिस तरह हम कहते हैं ना कि जो एम्पैथी का मामला होता है, टू फील द नेक्स्ट पर्सन, यानी जो लोग आपके साथ हैं उनको फील करना, उनकी जो आपके लिए कुर्बानियां हैं उनको फील करना, उनका जो आपके साथ तल्लुक है उसको फील करना,
जी। वालेकुम अस्सलाम उमर भाई।
जी फराज भाई।
जी माशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा जी आपका, आपने बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया। इस पे बस एक दो चीज़ें मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा सामने इन्हीं आयात की रोशनी में, जो पॉइंट मैं समझाऊँ ताकि चलें एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव भी सामने आता है, और हमारी जो कोशिश है वो यही है कि चलें हम एक दूसरे के साथ सीखें भी, समझें भी और अपने आप को भी बेहतर करें। जी जी। तो आज जो आपने आयत शुरू की है आयत नंबर 50 से, तो मैं इसको पिछली आयत के साथ ही जोड़ूंगा 49 से भी। उसमें भी जो आया अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह इस नजैनाकुम मिन आलि फिरऔन, ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने फिर आलि फिरऔन से मूसा अलैहिस्सलाम को निजात अता फरमाई, और उसमें जो ये अबना का कत्ल करते थे उनको ज़िबा करते थे उससे इनको निजात मिल गई, और जो औरतों को एक शर्मिंदगी की ज़िंदगी गुजरवाते थे उससे भी इनको निजात मिल गई। तो उसी तरह अगली आयत के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 50 के अंदर जो आज आपने सामने रखी है, तो उसमें भी यही लफ्ज़ आ रहा है, फ़ इस फ़रक ना बिकुम उल बहरा फ़ अनजई ना कुम, इसमें भी निजात का लफ्ज़ आ रहा है। तो मैं चाहता कि निजात के लफ्ज़ को भी थोड़ा सा हम खोलें थोड़ा सा, कि बेसिकली निजात अल्लाह ताला ने जो इस लफ्ज़ के अंदर जो खूबी रखी है वो ये है कि इसके अंदर एक कामयाबी का आंसर है। जैसे हम कहते हैं ना शुक्र है जी मैं तो बच गया या मेरी निजात हो गई, तो ये कामयाबी का आंसर होता है इसमें। तो लेकिन ये कामयाबी थोड़ी महदूद होती है, ये इंसानों की वो कामयाबी होती है जो हमने खुद अपने लिए कुछ सोची होती है या अपने तौर पर हम एक मामला तय करते हैं, तो उसमें इस निजात के लफ्ज़ के अंदर वो भी एक एलिमेंट आता है। और अल्लाह ताला ने जो फ़लाह है उसके अंदर मेजर कामयाबी जो है अल्लाह ताला ने लफ्ज़ फलाह के अंदर रखा हुआ है, जो अल्लाह ताला फरमाता है कि कद अफलाह मन ज़क्काहा व कद ख़ाबा मन दस्साहा, कि अल्लाह ताला फलाह की बुनियाद के ऊपर अपनी जो नेमतें हैं उनका इजहार फरमाता है। जब भी इंसान को की नेमत मिलती है तो अल्लाह ताला उसको मुफ्लिहून कहता है कि कामयाबी होने पाने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं या फलाह पाने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं। तो फलाह एक कहते हैं कि लामहदूद कामयाबी है, यह एक बहुत वसी कामयाबी होती है और वो अल्लाह ताला के पैमानों पे मबनी होती है या अल्लाह ताला के बताए हुए तालीमात पे चल के हमें मिलती है, और इसीलिए हम समझते हैं कि ज़िंदगी का अल्टीमेट मकसद भी फलाह पाना है, यानी ऐसी कामयाबी जो अल्लाह ने बताई है। एक वो कामयाबी है जो इंसान खुद अपने लिए सोचता है, और वो हमारी निजात का ज़रिया ज़रूर हो सकता है, जिससे हम कहते हैं जी ये फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो वो मेरी एक निजात का ज़रिया ज़रूर हो सकता है, या मैं कहता हूँ जी मैंने पढ़ लिया या मेरा कोई वीज़ा लग गया तो मेरी यहाँ से निजात हो गई, मैं कहीं और चला गया, तो वह एक लिमिटेड कामयाबी है। तो अल्लाह बताता है आयत नंबर 50 में, तो वह इस फ़र्क ना बे कुमुल बहरा, कि अब इनके दरमियान जो फ़र्क पैदा हुआ है, जो ये निजात इनको मिली है मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को और फिरौन की आल से जो उनको निजात मिली है, और एक जो फ़र्क पैदा हुआ है अल्लाह ताला कहता है उसकी बुनियाद क्या बनी है, वो बहर बना है जिसको इन्होंने क्रॉस किया है, और वो क्रॉस कर किया है तो अल्लाह ताला कहता है फअंजैनाकुम, तो जिसने क्रॉस कर लिया है वो बच गया है। वअग्रकना आला फिरौन, और फिरौन वो बहर जो है वो क्रॉस नहीं कर सका तो वो वहाँ पे गर्क हो गया। तो यहाँ पे बड़ी एक खूबसूरत बात जो मैं और भी रखना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सामने भी, कि यहाँ पे जाता है जो आखिर में जो दो लफ्ज़ यूज़ करता था वह अन तुम तंजुरून, कि वो तुम देख रहे थे, तुम्हारी आंखों के सामने गर्क हुआ है वो, यानी कि कोई ऐसी छुपी चीज़ नहीं है। तो अभी यहाँ पे जो लफ्ज़ यूज़ हुआ है ना नज़र का, नून जोए और रे का जो लफ्ज़ आया है, ये बेसिकली आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, नज़रियाती जिसे हम कहते हैं कि ये मैं नज़रियाती हो गया हूँ, ये मेरा नज़रिया है और मेरा नज़रिया मेरे साथ ये मामला कर रहा है। तो बेसिकली तंजुरून जहाँ पे आएगा वहाँ पे आइडियोलॉजिकल जो ना एक बात हो रही होती है, वरना देखने के लिए कुरान पाक में रा का लफ्ज़ भी है, अराइता का लफ्ज़ भी है, अनस्तु का भी लफ्ज़ है, फिर उसमें आरा का भी लफ्ज़ है, यानी डिफरेंट अल्फाज हैं कुरान पाक के अंदर देखने में। जैसे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा तो वहाँ पे और लफ्ज़ यूज़ हुआ, फिर कहीं पे अनस्तु का लफ्ज़ यूज़ हुआ। तो यहाँ पे बड़ा टिपिकली अल्लाह ताला ने तंजुरून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जो कि ये हमें दिखाता है कि ये नज़रियाती टकराव हुआ है, اور نظریہ کے سمندر میں سے جب گزرے ہیں تو جس کا نظریہ سچا تھا، جس کا نظریہ لوگوں میں ایکسیپٹیبل تھا، وہ نظریہ گزر گیا، وہ نظریہ پروان چڑھا ہے. اور وہ نظریہ کیا تھا کہ جی لوگوں کو بے موت مارنا چھوڑ دو، لوگوں کی جو ہم صلاحیتوں کا قتل کر رہے ہیں وہ کرنا چھوڑ دو. جیسے آج بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اسپیشلی پاکستان کے حوالے سے ہم دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ہمارا معاشی قتل بھی ہو رہا ہے، ہمارا تعلیمی قتل بھی ہو رہا ہے، ہمارا سماجی قتل بھی ہو رہا ہے. تو یہ وہ نظریہ ہے جو یہ اس بحر کے اندر لے کر اترے ہیں، اور اس بحر میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نجات عطا فرمائی، کیونکہ ان کا نظریہ اسٹرانگ تھا اور ان کا نظریہ انسانوں کی زندگی کے لیے بھرپور تھا. جیسے آپ بھی آپ نے فرمایا کہ حدیث کا بھی مفہوم ہے کہ لوگوں کے لیے جو سب سے زیادہ منفرد بخش ہوگا وہی بہترین انسان ہوں گے. تو جب ہمارا نظریہ لوگوں کے لیے منفرد بخش پیدا ہو سکتا ہے یا منفرد پیدا کر سکتا ہے تو وہ سب سے بہترین نظریہ وہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ ایک تھوڑا سا ہے کہ ہمیں اس نجات کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ بھی کرنا چاہیے کہ وہ اتنا ہم نے تو بہت معجزاتی اس کو تصور کر لیا کہ اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا تو کوئی کمال نہیں رہا، ان کی قوم کا تو کوئی کمال نہیں رہا، بس وہ تو ایک اللہ نے ایک بحر کو کھولا اور بند کر دیا. بلکہ اللہ یہاں پہ طنز روم کے لفظ کے ساتھ کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو، یعنی آئیڈیولوجیکلی تم دیکھو گے کہ نظریے کی تفریق ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ کی قوم وہاں سے گزر گئی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ بالکل ٹھیک تھا کہ عورتوں کو بھی زندگی دی جائے، عورتوں کو شرمندہ زندگی کی بجائے تبندہ زندگی دی جائے، اولاد کو یا ابنا کو جو ہے ان کی صلاحیتوں کا قتل نہ کیا جائے. اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یہ تو نجات کا ایک ذریعہ تھا جو کہ وقتی ہے، اب اصل چیز تو فلاح ہے. اس کے لیے اب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اگلا پروگرام موسیٰ علیہ السلام کو دے دیا کہ جی اب تم 40 راتوں کا جو نا تم وہاں پہ وعدہ لیا ان سے کہ وہاں پہ تم آؤ گے، تمہاری وہاں پہ تربیت کی جائے گی یا تمہیں وہ احکامات دیے جائیں گے. جیسے آپ نے ابھی آگے بھی بتایا کہ وہ کتاب اور فرقان ان کو ملتی ہے وہاں پہ، تو کتاب بیسیکلی مجموعہ قوانین بھی ہوتا ہے کہ جس میں قوانین ہیں، اور فرقان ایسی جو چیز ہوتی ہے جو تفریق کر دیتی ہے، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ وہ غلط اور صحیح کی تفریق کر دیتی ہے، وہ حق اور باطل کی تفریق کر دیتی ہے. تو وہ ضابطہ حیات اس طرح سے زیادہ ان کو پیش کرتا ہے یا ان کے ساتھ شیئر کرتا ہے کہ وہ صرف وہ رٹی رٹائی چیز نہیں ہو جاتی، بلکہ ان کا عملی طور پہ بھی اتنی کلیئرٹی آف مائنڈ ہو جاتی ہے کہ وہ جب واپس آتے ہیں وہ لوگوں کو بشارت دینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو نظارت دینے والے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایٹ اے ٹائم وہ لوگوں کو بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں ملیں گی، اور اسی وقت وہ ڈرا بھی رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو پھر دیکھو تمہارے ساتھ معاملہ جو ہے نا یہ ہو جائے گا کہ تم اپنی روٹی روزی کو بھی ترس جاؤ گے. جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میرے ذکر سے غافل ہوتا ہے اس کی میں معیشت تنگ کر دیتا ہوں، کہ جب اللہ کے قوانین سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ روٹی روزی کے لیے بھی لوگوں کا محتاج کر دیتا ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو وہ فرقان کے اندر بھی آتا ہے، اور کتاب جو مجموعہ قوانین یا مجموعہ تعلیمات ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نبیوں کو پیش کرتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اور ایک اور چیز جو شاکرون کا لفظ آپ نے ابھی ایکسپلین بھی کیا ہے، تو اس میں چھوٹا سا ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا کہ عربی میں شاکر اس بکری کو کہتے ہیں کہ جو کھائے کم اور دودھ زیادہ دے، یعنی انسانوں کی ان پٹ اپنے لیے کم ہو اور آؤٹ پٹ زیادہ ہو جائے گی تو وہ شاکر ہو جائے گا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو یہ حکم دیا ہوا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بنو، اور انبیاء کرام کے توسط سے ہمیں بھی یہ حکم ملا کہ ہم شکر ادا کرنے والے بنے. یعنی جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے چاہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے، ہمیں اس سے زیادہ آؤٹ پٹ دینی ہوگی معاشرے کے اندر. اور معاشرے کے اندر آؤٹ پٹ کون سی ہوگی؟ خیر الناس من ینفع الناس، کہ جو جتنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، چاہے وہ 10 روپے سے کام کرے، 10 یورو سے کام کرے یا 10 لاکھ یورو سے کام کرے، اس کو صرف اپنی کیپیسٹی میں دیکھنا کہ میں اپنی کیپیسٹی میں کیسے آؤٹ پٹ کو میکسیمم تک لے کے جا سکتا ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ تمہیں ہدایت ملتی ہے، اور اگر یہ نہیں کرو گے، اپنے اوپر ظلم کرو گے، جیسے کہ کسی کی بھی عبادت شروع کر دی، اس قوم نے عجل کی عبادت شروع کی جس کو ہم بچڑا کے الفاظ سے سمجھتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب تمہیں کیا کرنا ہوگا اگر تم یہ غلطی کر کے ہو، تو فقتلوا انفسکم، اب تم قتل کرو گے اپنے نفس کو. ٹھیک ہے، ہم جان کو بھی نفس کہتے ہیں کہ اس میں ظاہری قتال بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایک اس میں باطنی قتال بھی ہے کہ جو میں نے اپنی خواہشوں سے ایک اپنا وین ڈیولپ کیا ہے، اب مجھے اسے ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اب اللہ کا وین کام کرے گا. وہ کتاب اور فرقان ہمیں وین وہ دے رہی ہے تاکہ ہم طنز روم کریں کہ ہمارا جو نظریہ ہے معاشرے میں کتنا افیکٹو ہو سکتا ہے، اور اس نظریے کے ساتھ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے. اب اس نظریے کی وجہ سے مجھے اپنا جو پرانا نظریہ وہ قتل کرنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اسے آگے بڑھنا پڑے گا. تو یہ بھی ایک صورت ہے فقتلوا انفسکم کے اندر جو آتی ہے، کہ ایک ظاہری صورت ہے اور ایک اس کی باطنی صورت بھی ہے، تو جہاں پہ ظاہری بھی ہوگی ضرورت پڑے گی وہاں ظاہری کی جائے گی، اور باطنی تو ہر وقت موجود ہوگی کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی نماز، اپنی روزے، اپنی قربانی کا، میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنی نماز، اپنی قربانی، اپنا ہر چیز اللہ کی راہ میں پیش کر دوں. تو جب ہمارا نظریہ یہ ہوگا تو ہم اپنی من مانی چھوڑ دیں گے، تو اس سے ہمارے نفس کی بھی تربیت ہوگی، اس سے ہمارے نفس کا بھی تزکیہ ہوگا کہ ہم نے اللہ کے گوز کو فالو کرنا ہے، اور میرا جو نفس مجھے کہتا تھا اس کو میں نے قتل کر دیا، اس کو میں نے چھوڑ دیا، اب میں چھوڑ دیا، اب جو اس کا قتل ہو گیا مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے. تو یہ چند پوائنٹس ہیں جو میں ایڈ کرنا چاہتا تھا، باقی آپ نے بہت خوبصورتی سے چیزیں ایکسپلین کی، بہت شکریہ.
جزاک اللہ، اللہ خوش رکھے آپ کو، ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے پیش کیا. ہاں جی ڈاکٹر صاحبہ نور بھائی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
اچھا ماشاء اللہ سے فراز بھائی نے بڑی اچھی تفسیر، ان کا اپنا ایک نظریہ پرسپیکٹیو ہے جس کی حساب سے وہ دیکھتے ہیں قرآن کو. میں ان شاء اللہ، عمر بھائی آپ نے بھی بہت پیاری تفسیر کی قرآن مجید کی، آج ہم نے آیت نمبر 50 سے شروع کیا تھا نا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن جب نازل ہوا ہے، جن لوگوں پہ نازل ہوا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ چیز بڑی وضاحت سے کہی ہے کہ میں نے یہ اسی زبان میں نازل کیا جو اس وقت رہ رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ تھے، قریش کے زبان تھے، عربی مبین کے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے عربی مبین میں نازل کیا. تو اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے میرے خیال میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھے کہ وہ لوگ جو الفاظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے، وہ لوگ ان الفاظ کو کیسے دیکھتے تھے. یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ بنا کہاں سے، یہ اتنا ضروری نہیں ہوتا. کسی بھی کتاب، کسی بھی اسکرپچر کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، وہ لوگ ان الفاظ کو کیسے استعمال کرتے تھے، وہ کس معنی میں استعمال کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے بڑی بڑی محنت کی اس پہ کہ جو قرآن کی زبان ہے اس کو محفوظ کرنے کے لیے کون کون سا لفظ کس کس معنی میں اس وقت استعمال ہوتا تھا، وہ ساری ہسٹری دیکھیں، ہمارے علماء کی جو کتابیں دیکھیں، تفسیر کی کتابیں دیکھیں. تو اس چیز پہ بڑا انہوں نے زور دیا کہ وہ جو الفاظ استعمال ہوتے تھے وہ انہی الفاظ کو اسی حساب سے استعمال ہوتا ہے. اور دوسرا کانٹیکسٹ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، یعنی آپ کوئی بھی کتاب سمجھتے ہیں تو اگر آپ کانٹیکسٹ سے نکال لیں گے کسی چیز کو اور آپ اپنے لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی خاص کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ مرد بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں کہ وہ کون سا کانٹیکسٹ ہے، کیونکہ یہ کتاب ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک آیت الگ الگ سے نازل کر دی ہے. اللہ تعالیٰ خاص کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں. ہر اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں کیوں نازل، کیونکہ ہر صورت کا اپنا ایک کانٹیکسٹ ہے اور خاص اس کا اپنا تھیم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے جو سورہ بقرہ کا بھی ہے، جو مین تھیم ہے جو علماء جس طرح سمجھتے ہیں، وہ یہی کہ یہ سورت اس لیے بھی شروع میں آ گئی ہے کہ جو مخاطبین ہیں قرآن کے، زیادہ جو بڑی جماعت ہے، جو دینی جماعت ہے، وہ بنی اسرائیل کی ہے نا، یہود کی ہے وہ، کیونکہ مسلمانوں کے تو یہ نازل ہوئی ہے، مسلمان تو اس کو مانتے ہیں، لیکن دعوت کے لحاظ سے سب سے آگے وہ جماعت آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے یہ سورت بھی پہلے نازل کی ہے اور ان کو دعوت میں بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ان سے جو گلے شکوے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ان کی جو ناکامیاں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں کہ کس وجہ سے وہ ناکام ہوتے جا رہے تھے. تو یہ ساری چیزوں کو اگر ذہن میں رکھیں پھر قرآن کی تفسیر کریں تو پھر سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے، مثلا یہ تو بہت زندہ واقعہ ہے نا، جو موسیٰ علیہ السلام کا جو دریا کو اللہ تعالیٰ نے دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا، اس کو ابھی بھی وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا. اگر کسی کا، اگر جو ابھی بھی آج کر کے بھی جیویش، اگر ان کے ساتھ تھوڑا سا آپ کانٹیکٹ ہو تو آپ کو پتہ سمجھ چل جاتا ہے کہ اس دن کو وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا واقعہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی جو سورہ بقرہ ہے اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آگے تو تفصیل سے یہ واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ بھی بیان کر دیے، لیکن سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شارٹ شارٹ ان کے جو بڑے بڑے واقعات ہیں ان کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا کہ دعوت کے لحاظ سے یہ بڑا یعنی اس میں بڑا اثر آ جاتا ہے کہ آپ ان کے بڑے بڑے جو ان پہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نازل کیے اس کو پہلے پہلے بیان کر دیں کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی نعمتیں میں نے آپ پہ نازل کر دی تھی، آپ کے ساتھ کہاں کہاں پہ میں نے کتنی نیکیاں، کتنی آسانیاں فرمائی تھی آپ لوگوں کے لیے. تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے، تو یہ واقعہ بھی بڑا واضح ہے میرے خیال میں. اس کو اگر آپ اس کے الگ الگ معنی نکالنے کی کوشش کریں گے تو یہ قرآن کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے کہ قرآن بڑا واضح ہے، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کیا کہ مثلا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا. اس کی بھی عمر بھائی آپ نے بڑی پیاری تفسیر کی، ایسا ہی ہے یہ 40 دن کا. علماء اس کو اعتکاف سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ ایک قسم کا اعتکاف بھی تھا، اصل میں 30 دن کے لیے تھا، لیکن سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی بھی وضاحت کر دی کہ 40 دن کی کس وجہ سے بھی. وہ اس وجہ سے بھی کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے ہم سورہ اعراف میں دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام وقت سے پہلے چلے گئے تھے بہت زیادہ شوق میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کے لیے کہ نہیں، کیونکہ دین کا مقصد بھی بالکل عدل ہوتا ہے، قسط ہوتا ہے. دین کو سمجھنے کے معاملے میں بھی انسان بالکل ٹھیک جگہ پہ ہونا چاہیے، نہ زیادہ ہونا چاہیے نہ کم، افراط تفریط میں نہیں جانا چاہیے. اس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کے اللہ تعالیٰ نے 10 دن کا اور دن بڑھا دیے تھے ان کی تربیت کے لیے، پھر 40 دن کے لیے وہ روزے بھی تھے، اعتکاف بھی تھا. تو یہ اس وجہ سے بھی ضروری تھا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کو مل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو حاصل کرنے کے لیے خاص تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا تھا 40 دن کے لیے. پھر ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو یہ اسی واقعے میں پھر انفارچونیٹلی ایسا ہو گیا تھا کہ جو موسیٰ جو پیچھے جو ان کی قوم تھی انہوں نے مثلا ایک بچڑے کو کی معبود عبادت شروع کر دی تھی. اس میں بھی جو اگر ہم دیکھیں تو یہود جو ہیں بنی اسرائیل، جو ان کی جو بائبل میں ان کی جو ہسٹری ہے، انہوں نے اس میں ہارون علیہ السلام کو بھی شامل کیا ہے، تو لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ وضاحت کر دی کہ ہارون علیہ السلام تو ان کو بہت سمجھا رہے تھے، یعنی ہارون علیہ السلام اس میں شریک نہیں تھے، وہ ان کو بہت سمجھایا، لیکن ان کی قوم بہت زیادہ ایک قسم کی سرکش قسم کی تھی، تو وہ اس وجہ سے وہ ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو جن کو کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے جو بڑے تھے ان کو یہ ذمہ داری دی تھی، ان میں ہارون علیہ السلام بھی تھے. اس لیے ہم آگے دیکھیں گے ہارون علیہ السلام کے ساتھ بھی موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ غصہ تھے کہ آپ نے کس قسم کی یعنی سرپرستی کی ہے میرے جانے کے بعد. تو یہ موسیٰ علیہ السلام وہ انتم ظالمون، اور اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تم اپنے جانوں پہ ظلم کر رہے ہو اور کسی پہ نہیں کر رہے. شرک ایسا ہی ہے، انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے. ثم عفونا عنکم من بعد ذلك لعلکم تشکرون، پھر اللہ تعالیٰ ثم عفونا عنکم، یعنی اس کے بعد، یعنی یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے تم لوگوں کو اس کے بعد بھی تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گنوا دیں کہ مثلا اپنے احسانات کے، یعنی یہ اتنی بڑی چیز ہونے کے بعد بھی میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا تھا. تو ظاہر بات ہے یہ معافی بھی اتنی آسانی سے ایسے نہیں آتی تھی، کیونکہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور ایک رسول کے ہوتے ہوئے شرک تو یہ بہت، یعنی بہت بڑی غلطی ہے. جو لوگ یعنی رسول پہ ایمان لے آئے اس کے بعد شرک کا ارتکاب کرے اور رسول بھی دنیا میں موجود ہے، تو اس کے لیے پھر سزا ہوتی ہے. تو اس لیے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سزا ایسے ہی تھی. تو اگر ہم بائبل بھی دیکھیں اور اس کو دیکھیں تو اسی سے بھی ان کی بائبل کے تھوڑی سی تھوڑا سا فرق ہے. اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ایک قوم تھی نا بنی لاوی کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کر دیا تھا اس چیز پہ کہ وہ باقی لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے شرک کیا، لیکن قرآن سے اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں تھا. جو فقتلوا انفسکم کے جو الفاظ ہیں وہ ایسا ہی ہے کہ ہر قوم کے جو لوگ موحدین تھے، جو توحید پہ قائم رہتے، انہوں نے پھر وہ دوسروں کو قتل کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم بھی ایسے ہی دیا تھا نا کہ اپنوں کو قتل کر دو. انفسکم کے بھی معنی دونوں نکلتے ہیں عربی میں، لیکن جس طرح میں نے پہلے بتایا کانٹیکس بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کانٹیکس سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ اس معنی میں، کیونکہ دونوں معنی نکلتے، ایک معنی نکلتا ہے اپنے آپ کو قتل کر دو، دوسرے معنی نکلتا ہے کہ اپنے لوگوں کو قتل کر دو. عربی میں یہ دونوں طرح سے یوز ہوتا ہے، جو یعنی جو قریش کے لوگ تھے وہ دونوں طرح سے یہ لفظ کو یوز کرتے تھے. سب پہلے بتایا کہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ قرآن کے کون سے الفاظ کو عربی میں کیسے یوز کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی فرمایا کہ فقتلوا انفسکم، یعنی اپنے لوگوں کو، یعنی اپنے قوم کے لوگوں کو قتل کرو. تو اللہ تعالیٰ کو یہ حکم دیا تھا. پھر ذالکم خیر لکم عند بارکم، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ یہ تمہارے جو رب ہے اس کے نزدیک، یعنی یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. یعنی لگتا تو یہ بہت مشکل کام ہے نا انسان کو، لیکن جماعت کی ایک رسول کے ہوتے ہوئے ایک ایسی جماعت کے جس کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہو دوسری قوموں کی تربیت کے لیے، ان کو دین پہنچانے کے لیے، ان میں اگر اس طرح کے لوگ موجود ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ کام نہیں ہو سکتا کہ جو شرک پہ بھی ہو، جن کے عقیدے بہت زیادہ خراب ہوں، تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو ایک پیغمبر موجود ہے، وہ تربیت بھی کرے، اس کے باوجود بھی لوگ اس قسم کے ہوں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بہت بہتر ہے. فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یقین اللہ تعالیٰ یعنی توبہ کو قبول کرنے والے، معاف کرنے والے، رحیم ذات ہیں. یہ میری مختصر تفسیر.
جزاک اللہ. یہ بالکل میں اس پہ کمنٹ کروں گا. ایک تو یہی چیز میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق الفاظ کی جو تعریف ہے اس کانٹیکسٹ کے مطابق ہو، قرآن کے اندر سے معنی نکلیں، چاہے جائے کہ ہم اس میں اپنے معنی ڈالیں، یہ ورنہ قرآن کے ساتھ انصافی ہوتی ہے. اور جو لوگ لازمی بات ہے قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں ان کو ان چیز کا علم ہوتا ہے، اور اس کا علم حاصل کرنا چاہیے کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ قرآن خود ہے. ٹھیک ہے، قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ مثال ہے، یہ جو فقتلوا انفسکم کا معاملہ ہے. اب مجھے آیت یاد نہیں آ رہی، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ تم پہ تو ہم لوگوں نے اتنی سختی نہیں کی کہ تم فقتلوا انفسکم کرو. وہاں بھی یہی الفاظ آئے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. اشارہ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرف وہاں پہ ہے. اگر آپ لوگ چاہیں گے تو میں انشاءاللہ نکال بھی دوں گا وہ آیت آپ لوگوں کو.
جی بالکل. ولا ان كتبنا عليهم ان يقتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. اللہ تعالی وہاں بھی مسلمانوں سے، کیونکہ ان میں بھی جو تھوڑے منافقین تھے جن کا ایمان کمزور تھا، اللہ بھی وہاں پہ بھی ان لوگوں کو یہ تھوڑے سے سختی سے بات کی ہے کہ اگر میں تم کو یہ حکم دیتا کہ تمہیں اپنے آپ کو قتل کرو، یعنی اپنے لوگوں کو قتل کرو، تو وہ آپ تم لوگوں کے لیے بہتر ہوتا. اللہ تعالیٰ وہاں بھی ایسے فرما، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں سے بہت کم لوگ یہ کرتے، کیونکہ یہ کام مشکل تھا کافی زیادہ. اللہ تعالیٰ وہاں بھی فرما رہے کہ بالکل یہ قرآن ہے، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرمائی.
بالکل، جزاک اللہ. آپ کا فائدہ یہی ہے نا، حافظ ہیں آپ کو یاد رہتی ہیں تو آیات.
اللہ کا شکر.
ماشاء اللہ. مطلب یہ کہ قرآن اپنی تفصیل خود کرتا ہے، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اس تذکیر کو یہاں پہ لے کے آئیں ڈفرنس پرسپیکٹیو سے، اور ایک دوسرے سے اس طریقے سے بندہ سیکھتا بھی ہے. اور دوسری بات یہی ہے کہ اگر ہم اس سارے معاملے کو دیکھیں، میں تھوڑا سا آپ لوگوں کا وقت مزید لینا چاہتا ہوں، کہ اگر آپ پورے واقعے کو دیکھتے ہیں نا، جو میرے اصل میں رہ گئی بات وہ یہ ہے کہ اوپر آدم علیہ السلام سے جو معاملہ ہوا ہے، یہ اس کی ریفلیکشن موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. اس میں بھی یہی ہوا تھا، غلطی ہوئی تھی، توبہ ہوئی تھی، اللہ نے معاف کیا تھا، اور الفاظ بھی وہی استعمال ہوئے ہیں. اگر آپ اوپر آیات میں جائیں گے نا، تو اللہ تعالیٰ نے الفاظ کو ریپیٹ کیا ہے اصل میں، جو توبہ کا معاملہ ہے. اور دوسرا یہ کہ تواب الرحیم جو بات آ گئی، اس پہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ یہ میرے خیال میں زیادہ وقت لے لے گا. اصل میں جو توبہ کا بنیادی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس میں جو غلطی ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ہوتا ہے. جن لوگوں نے غلطی کی ہے ان کو مطلب ہے کہ اس کا صلہ جو ہے نا وہ پورا کرنا پڑتا ہے، تبھی جا کے توبہ والا معاملہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ورنہ اس کے لیے پھر توبہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا قرآن میں، جو دوسرا اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں بغیر جزیے کے یا جو بھی لفظ آپ استعمال کریں. انشاءاللہ، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا ماشاء اللہ تفصیل بیان کی ہے ڈاکٹر صاحبہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ. ماشاء اللہ آپ سب لوگوں نے ماشاء اللہ بہت محنت سے ڈسکرپشن دی. میں تھوڑا سا بس یہ کہنا چاہوں گی کہ ایکچولی آئیڈلیٹری جو ہے، جو بتوں کی پوجا ہے، وہ انسان کا ایک جو لوور یا کم شعوری ہے وہ اس میں جھلکتی رہتی ہے وہ چیز، کہ انسان جو ہے وہ کسی نہ سمبل کو چاہتا ہے جو نظر آ رہا ہو. تو یہ بہت پرانی چیز ہے، اور مطلب کہ کسی بھی چیز کو وہ ایک سمبولک وہ بنا لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کے تھرو وہ چاہتا ہے کہ میں جو بھی کریٹر ہے یا جس کو میں دیکھ نہیں سکتا یا جس کو میں اپنی ان سینسز سے نہیں فیل کر سکتا کانکریٹلی، تو میں نا اس کو اس کے تھرو پکاروں. تو یہ آئی تھنک ہر انسان میں یہ ایک ویکنیس ایگزسٹ کرتی ہے کہ ہم کسی جو چیز ہمیں ایک لوور لیول آف کانشیسنیس یا ہمیں ڈائریکٹلی اپنی سینسز سے جس کو ہم گراسپ کر سکتے ہیں، جو فائیو سینسز ہیں، اس کے تھرو ہم کسی اور چیز تک پہنچ جائیں. تو یہ اس لیے بہت پرانا اور بہت امپورٹنٹ میٹر ہے ہم سب کے لیے، انڈیویجول لیول پہ بھی جو بت پرستی ہے یا آئیڈلیٹری جس کو کہتے ہیں. کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے، تو ایک تو انہوں نے یہ دعا مانگی تھی کہ اللہ ان کو پھل اور نعمتیں دے، جو کہ ہماری اس لائف میں آئی تھنک سب سے جو ہم इम्पॉर्टेंट चीज होती है जिसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वो रिस्क होता है, उसकी फिक्र भी इंसान को बहुत ज्यादा होती है, और उसके बाद फिर जाहिर है इंसान की और जरूरियात होती हैं, फैमिली लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इंसान के लिए, औलाद इंपॉर्टेंट होती है। तो उन एक तो उन्होंने ये दुआ की थी, और दूसरी दुआ जो उन्होंने की थी अल्लाह ताला से वो ये की थी कि या अल्लाह मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना। और बहुत ज्यादा लोग तेरी मखलूक में से जो है वो बुत परस्ती में इन्वॉल्व है। तो अगर हम आजकल भी देखें तो इस्लाम में अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग इस्लाम की तरफ आते हैं, जो रिलीजन में इंटरेस्टेड होते हैं और वो बाद में इस्लाम की तरफ आते हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज वगैरह सुने तो बहुत ज्यादा लोग, एक तो ये कि वो डायरेक्टली कुरान के थ्रू आते हैं, और दूसरी बात है कि वो इस्लाम की जो तौहीद की क्लैरिटी है उसकी वजह से आते हैं। क्योंकि बहुत सारे रिलीजन्स ये कहते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, जैसे क्रिश्चियंस यही कहते हैं कि हम मोनोथिस्ट हैं, हम एक खुदा को मानते हैं, लेकिन वो इतना कॉम्प्लिकेट उसको कर देते हैं कि हम थ्री के थ्रू एक को मान रहे हैं, और थ्री इन वन, और वन इन थ्री, और ट्रिनिटी, और गॉड हेड का नाउजुबिल्लाह नाउजुबिल्लाह जो कॉन्सेप्ट है, अल्लाह ताला माफ फरमाए, तो वो उस चीज को इतना कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि मतलब उसकी सेंस नहीं बनती। कोई चीज जितनी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी उसकी जो असल है वो उतनी हमें नजर नहीं आएगी कि असल क्या है इसमें। तो एक तो ये चीज है कि अभी भी जैसे हिंदूज जो है, हम लोग हिंदूज का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अपने हम लोग जो हमारे बायसेस वगैरह है या पॉलिटिकल इश्यूज है उनकी वजह से हम उनका मजाक उड़ाते हैं, आइडोलेट्री का भी, और अक्सर बुतों का मजाक भी उड़ाते हैं, गलत गलत करते हैं। लेकिन अगर हिंदू उलेमा को भी अगर हम सुने या उनसे किसी की कोई बहुत ऑनेस्ट कन्वर्जेशन हो, तो वो भी कहते हैं कि हम एक ही खुदा को मानते हैं, लेकिन ये जो बुत हैं ये हमें उस खुदा तक पहुंचने में मदद करते हैं। कि हम जब फोकस करते हैं या हम दुआ इसके थ्रू करते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा हम किसी चीज को देख रहे हैं लेकिन ये हमें पहुंचा रहा है। तो एक तो ये चीज है कि जैसे जो बनी इसराइल ने किया, उनके दरमियान में हजरत मूसा थे, हजरत हारून थे, और जब हजरत मूसा कहीं गए, जब माशाल्लाह गए वो अपने 40 डेज के उसपे, तो वो भी वापस आइडोलेट्री पे आ गए, क्योंकि वो भी उसी लोअर कॉन्शियसनेस के लेवल पर आ गए कि हमें कोई चीज नजर आए। अब मूसा नहीं नजर आ रहा और वो हमें नहीं हर वक्त खुदा की वहदानियत का बता रहा, तो हम किसी चीज को जो है ना वो सिंबॉलिक कर लें। अब इसमें भी जो है बहुत सारे, आपको भी पता होगा, बहुत सारी ऑडियंस को भी पता होगा कि जो काफ है, जो बछड़ा है, वो हमेशा से आज भी जो है वो वेल्थ का और बहुत फरावानी का जो है ना एक सिंबल रहा है। तो इसीलिए मतलब वो तब से ही चला आ रहा है, और कि इसको उन्होंने ये किया कि अच्छा वेल्थ और हर चीज के लिए जो है, और इसमें जेवरात वगैरह भी इस्तेमाल किए बनी इसराइल की खवातीन के। तो यही एक आइडियोलेट्री का ही प्रॉब्लम चल रहा था कि जैसे ही उनके दरमियान नबी नहीं रहे, अब यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि तुम्हें बार बार नबी भेजे, तो सबसे बड़ी नेमत ही है कि जब हम कोई गलती कर रहे हो तो हमारे पास एक एक बहुत क्लियर अथॉरिटी वाला बंदा आके हमें बता दे कि ये आप गलत कर रहे हो, आप इसको सही कर लो। मतलब इससे बड़ी कोई नेमत नहीं हो सकती, और आजकल यही नेमत जो है इस तरह से इस फॉर्म में हमारे पास नहीं है। हमारे पास अल्लाह का शुक्र है कि कुरान है, हम कुरान की तरफ जाएं उसमें, लेकिन हमारी अपनी भी बहुत ज्यादा वो होती है कि हमारा दिल किस तरफ है, हम कितनी मेहनत करते हैं या नहीं करते। लेकिन अगर एक, क्योंकि इंसान जो है वो अथॉरिटेरियन इंसानों को बहुत फॉलो कर, तो ये सबसे बड़ी नेमत उनके लिए थी कि मूसा जब भी वो कोई गलती करते थे तो कोई ना कोई प्रॉफिट उनको करेक्ट कर देता, अल्लाह ताला उन्हें माफ फरमा देता था। तो एक तो इसकी इंपॉर्टेंस भी पता चलती है कि जैसे जो प्रॉफिट्स थे, या जो आजकल जैसे कई लोग कहते हैं कि स्पिरिचुअल लीडर्स की, या जो अच्छे और नेक लोग होते हैं उनकी लाइफ, उनकी आपकी लाइफ में एक इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन खैर ये एक बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है कि कौन हो आपकी लाइफ में, कौन ना हो, किसको मेंटोरशिप करनी चाहिए किसको नहीं, लेकिन उसकी ये इंपॉर्टेंस होती है कि वो आपकी गलतियों को, अपने जो अपना और आपका उसका साथ रिलेशनशिप होता है वो उसकी बेसिस पे करेक्ट कर देता है। तो कहीं ना कहीं हम सबको चाहिए कि हम कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के लिए एटलीस्ट, या जो भी हमारी इन्फ्लुएंस में कोई ना कोई लोग होते हैं हमेशा, अल्लाह ताला ने जैसे ये भी हदीस में भी आता है कि हर एक तुम में से एक चरवाहा है, और जिस जो भी तुम्हारे अंडर है उसका तुमसे सवाल होगा, तो कोई ना कोई हमारी केयर में होता है, या बेशक हमारे अपने घर में कोई है, या कोई छोटा है, कोई बच्चा है, या कोई और जो है जो हम एज अ मोर लर्नेड पर्सन देखता है, तो हम हमारा जो इन्फ्लुएंस होता है तो हम उसको अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं उसकी गलतियां करेक्ट करने के लिए। और बाकी इसमें दोबारा आयत में बार आखिर में यही आता है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें माफ फरमा दिया। मतलब जब भी अल्लाह बंदों से गलतियां होती रहती हैं, लेकिन जब बंदा अल्लाह ताला की तरफ टर्न करता है, तौबा करता है, दोबारा मुड़ता है, तो वो अल्लाह ताला को रहीम ही पाता है बेशक। और अल्लाह ताला हम सबको बुत परस्ती से बचाए, जिसकी बहुत ज्यादा फॉर्म्स होती हैं, मतलब कि हमारे जरूरी नहीं है कि कोई वही हो, जैसे आजकल तो सबसे बड़ा कहते हैं कि है ही वेल्थ, मतलब कि लोग लिटरली इबादत करते हैं अल्लाह ताला हम सबको बचाए पैसे की और इन चीजों की, तो अल्लाह ताला हम सबको बचाए और हिदायत दे. आमीन सुम आमीन. थैंक यू.
आमीन। बहुत जजाकल्ला। अच्छा पर्सपेक्टिव आपने दिए उसका, आइडियलिटी का, बुत परस्ती का, असल में कि इंसान जो है ना देखना चाहता है चीज़ों को, परखना चाहता है कि नज़र से, आँख से मुझे नज़र आए, शऊर शऊर, क्योंकि अगला दर्जा है तो शऊर की तरफ हर बंदा जो है ना नहीं होता। हम अब प्रोग्राम के अगले सेशन में जा रहे हैं, तफसीर कुरान का जो मामला है वो खत्म हो गया। अब सवाल जो है उसकी तरफ हम जाएंगे। हमारे पास आज का जो सवाल है वो मैं आप लोगों को खा देता हूँ। अगर इंसान का शऊर खुद अच्छाई और बुराई की तमीज़ कर सकता है तो उसके लिए अल्लाह की तरफ से वही का नज़ूल क्यों ज़रूरी है? ये सवाल है। कौन सबसे पहले इसका जवाब देगा?
जी उमर भाई, आप इजाज़त दें तो फिर मैं स्टार्ट कर लूँ, अगर बाकी कोई और स्टार्ट करना चाहे तो वो स्टार्ट कर सकते हैं.
बिस्मिल्लाह।
अच्छा, बुनियादी तौर पर ये जो सवाल है ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन बन चुका है हमारे यहाँ कि इंसान को वही की क्या ज़रूरत है, जबकि इंसान अच्छाई और बुराई का फैसला खुद कर सकता है, उसे पता है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. ये तो हर मुआशरे में चलती आ रही है, कोई नई चीज़ें नहीं बयान हो रही. यानी सच बोलना तो पहले से कायम है, ईमानदारी करना ये भी पहले से पता है लोगों को, अच्छे काम करना, एक दूसरे के साथ उसने सलूक करना ये भी हमें पता होता है. असल में मैं जो समझता हूँ ज़रूरी चीज़ ये है कि हर जो सवाल है वो किसी ना किसी सोच की पैदावार होती है, और हर जो सोच है वो किसी ना किसी नज़रिए के साथ जुड़ी होती है, क्योंकि नज़रिया जो है वो आपके अंदर एक सोच इंजेक्ट करता है और फिर वो सोच आपके अंदर सवाल पैदा करती है, और फिर हम उन सवालों को अल्फाज के ज़रिए बाहर बयान करते हैं या उनको अपने साथ इंगेज करते हैं. तो बेसिकली ये जो नज़रिया है, मैं इसे कहता हूँ ये मकामे पैदाइश है, ये सोच का और सवाल का जो मकामे पैदाइश है वो नज़रिया है जो इंसान अडॉप्ट करता है. इससे ज़्यादा कहता है कि जिसका जी चाहे ईमान ले, जिसका जी चाहे कुफर करेगा, कि वो जो नज़रिया अडॉप्ट करेगा उसके बाद उसके अंदर वो सोच, उसके अंदर अमल पैदा होगा, उसकी सोच और सवालात पैदा होंगे. तो यहाँ पर जो मकामे पैदाइश है इस सवाल का, वो बेसिकली ये चीज़ है कि इंसान को फितरतन एक फितरत पे पैदा किया गया है, तो इंसान जब उस फितरत पे रह सकता है तो फिर दूसरी चीज़ों को साथ देने की क्या ज़रूरत है. तो जब हम देखते हैं कि इस चीज़ को हमने कैसे समझा कि इंसान एक फितरत पे पैदा किया गया है, तो ये बेसिकली वो कॉन्सेप्ट है जो हमें साइंस प्रोवाइड कर रही है. साइंस हमें ये बताती है कि हर जानवर जो है वो एक फितरत के ऊपर, एक जबिलत के ऊपर, जिसे हम इंस्टिंक्ट कहते हैं, कि जबिलत के साथ पैदा हुआ है, और हर जानवर उसी जबिलत या उसी फितरत को हम पूरी ज़िंदगी, वो पूरी ज़िंदगी साथ लेके चलता है. इसकी मिसाल बहुत सादा है कि अगर मैं शेर और बकरी की मिसाल दूँ तो शेर जो है वो नॉन वेज है और बकरी जो है वो वेज है. ठीक है, तो शेर जो है वो भूखा मर जाएगा लेकिन वो सब्जी या घास फूस नहीं खाएगा, उसको गोश्त ही चाहिए होगा. तो ये उसकी एक जबिलत है जो उसकी भूख मिटाने के लिए अल्लाह ताला ने उसके अंदर वदियत की है, या वो प्रोग्राम हुआ हुआ है इस चीज़ के ऊपर. और दूसरी तरफ एक बकरी का बच्चा है, वो प्रोग्राम हुआ हुआ है कि उसने घास फूस खानी है, उसने वेजिटेबल या वेज ही रहना, उसे वो नॉन वेज नहीं होगा. ठीक है, तो ये जो एक बेसिक इंस्टिंक्ट अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ये कुदरत की, फितरत की हर चीज़ के अंदर हमें दिखाई देता है. और लेकिन यहाँ पे आके जब हम साइंस हमें ये बताती है कि अब चूंकि इंसान भी फितरतन जो है वो सोशल एनिमल है, तो इसलिए हमारा भी बिहेवियर जो होगा वो एनिमल्स की तरह होगा. यानी जैसे जानवरों को, बाकी तख्लीक को, बाकी मखलूकात को एक जबिज़त के तहत पैदा किया गया है, तो लाजमन इंसान भी एक जबिज़त के तहत पैदा किया जाए, जाना चाहिए. ठीक है, तो साइंस हमें मजबूर करती है इस नज़रिए को अडॉप्ट करने के लिए. तो फ़र्क बुनियादी कहाँ पे आता है कि जब हम इस नज़रिए को अडॉप्ट कर लेते हैं और कुरान की तरफ नहीं आते या इंसान की कंपोजिशन की तरफ नहीं आते जो हमें कुरान से पता चलती है, तो वो क्यों हमें कुरान से पता चल सकती है? क्योंकि कुरान या वही का जितना भी इल्म है, चाहे वो जबूर का है, इंजीर का है, तौरात का है, वो वही के जरिए अल्लाह ने पैदा किया. और उसमें हम देखेंगे कि ये कॉमन जो चीज़ है वो है आदम की पैदाइश, वो है आदम की तख्लीक, वो एक कॉमन चीज़ है हर मज़हब के अंदर और हर किताब के अंदर ये मौजूद है. तो बेसिकली चूंकि अल्लाह हमारा खालिक है तो वो हमारी कंपोजिशन को समझता है. मैं खुद अपनी कंपोजिशन को नहीं समझ सकता, इवन के आज भी इंसान मेडिकल में इतना एडवांस होने के बावजूद अपने पूरे बॉडी ऑर्गन्स को नहीं समझ पा रहा कि वो क्या है. और अभी हमें पैदा हुए पता नहीं कितने हजारों लाखों साल हो चुके हुए हैं. तो अल्लाह ताला हमें ये बताता है कि इंसान को जब मैंने पैदा किया तो इसका एक तबीयी जिस्म था और एक इसका बतनी जिस्म था, जिसको हम बातिन कहते हैं, जिसको नफ्स कहते हैं, जिसको रूह के नाम से हम जानते हैं. तो बताने का मकसद ये है कि अगर हम सिर्फ साइंस में रहेंगे तो साइंस चूंकि इल्म ही सिर्फ हिस्सियात का इल्म है, वो चलता ही सिर्फ पांच हिस्सों के ऊपर है, हवासे खमसा के ऊपर चलता है, और इसके बाहर साइंस सोच नहीं सकती। तो साइंस की एक लिमिटेशन है। अब होता क्या है कि जब हम साइंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो इल्म बता रही है ये कुल इल्म है, तो हम अपने आप को महदूद करके उस इल्म के साथ जुड़ जाते हैं, और फिर हमारे जहन में ये सवाल पैदा होता है कि अगर जानवर की फितरत मखसूस है या महदूद है, तो इंसान की फितरत क्यों महदूद नहीं है, क्यों हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी हमें परखना इसी बात को है कि अगर हम साइंस की डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के इंसान एक फितरत पे तो नहीं चल रहे, पूरी दुनिया में हम एक जैसा काम तो नहीं कर रहे। तो यानी कहीं ना कहीं कोई कोलैटरल डैमेज हो रहा है, या कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिफरेंस है जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा, या साइंस हमें दिखा नहीं पा रही। तो पहली चीज़ हमें ये देखनी होगी कि जो साइंस का नज़रिया है वो अभी पक्का नहीं हुआ, यानी कि इंसान सोशल एनिमल जो बताया जाता है ये हरफे आखिर नहीं है, ये अभी हो सकता है आने वाले 100 सालों बाद चेंज हो जाए। तो कुरान जबकि हमें बताता है, वही हमें ये बताती है कि इंसान जो है वो जानवर ही नहीं है, ठीक है, वही हमें यह बताती है कि इंसान जो है इसकी जो तख्लीकी मराहिल हैं ये दाबा, यानी कि एक ना नजर आने वाली चीज़ या एक अजीब से जानवर वाली चीज़ थी कभी, या दाबा कोई फॉर्म थी इसकी, वहाँ से ये बशरियत में आ गया, वहाँ से ये बशर बना, वहाँ से इसके बशरी तकाजे पैदा हुए जिसमें खाना पीना, जज्बात हैं, खुराक है, रहना है, सहना है, कपड़े पहनना है, मकान बनाना वगैरह वगैरह, ये हमारे बशरी तकाजे हैं। फिर जब ये इंसान बनता है तो इसके अंदर अल्लाह ताला कहता है मैंने फिर रूह फूंक दी, इसमें मकसदियत आ गई, फनफखना फीहा मिन रूहिना, अल्लाह ताला कहता है कि पहले बशर है, बशर किससे है, मिन तीन, कि ये वो खनखनाती मट्टी से है। अब ये बड़ा खूबसूरत इस्तारा है खनखनाती मट्टी का, कि खनखनाता कौन है, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट है वो खनखनाता है, अभी उसके बजाने वाले के ऊपर है कि वो उसको कितना खूबसूरत बजाता है। तो इंसान खनखनाती मट्टी से है, अभी उसके बना तरबियत देने वाले पे अमल, तरबियत देने वाला जो इंसान है उस पर डिपेंड करता है कि इसको कितना अच्छा इंसान बनाता है। अब वो अच्छा इंसान जो बनेगा, अल्लाह ताला कहता है कि वो रूह के तहत बनेगा, कि जिसमें मेरी रूह होगी, मेरी मकसदियत होगी, वो अच्छा इंसान होगा, जिसमें मेरी रूह या मेरा मकसदियत शामिल नहीं होगी वो अच्छा इंसान नहीं होगा। अब वो मकसदियत अल्लाह ताला कहता है कहाँ से मिलेगी, वो वही से मिलेगी, और वही क्या करती है उस इंसान को जिसको अल्लाह ताला मकसदियत से जोड़ता है, अल्लाह ताला कहता है कि वही उसी इंसान को आदम बना देती है, मकाम आदमियत पे ले आती है। अब मकाम आदमियत बड़ा खूबसूरत मकाम है, वो मकाम हमें ये बताता है कि ये वो मकाम है जब इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद उठाता है, अपने अमाल की जिम्मेदारी खुद उठाता है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें बताया कि जी फरिश्तों ने सजदा नहीं किया, फरिश्तों ने सजदा किया, इबलीस ने सजदा नहीं किया। अब इबलीस से जब पूछा गया तुमने सजदा क्यों नहीं किया, उसने कहा जी मैं इससे बेहतर हूँ, यानी कि उसने ये कहा कि मैं इसे तस्लीम नहीं करता। अब सबसे पहली चीज़ आ गई कि इबलीस की गलती ये नहीं है कि उसने सजदा नहीं किया, इबलीस की पहली गलती ये है कि उसने सजदा ना करने के बाद जो उसका एक्सक्यूज़ किया वो गलत एक्सक्यूज़ किया, उसने कहा जी मैं इससे बेहतर हूँ, मैं इसे तस्लीम नहीं करता। अच्छा, यहाँ से इंसान आगे बढ़ता है, इंसान को अल्लाह ताला कहता है कि अब तुम आदम के दर्जे पे आ गए हो, अपने शजर के करीब नहीं जाना। वो शजर क्या करता है, इसकी बहस में नहीं हम पढ़ते कि वो शजर के करीब जब जाता है अल्लाह ताला उससे पूछता है कि तुमने ये क्यों किया, तो वो कहता है कि रब्बाना ज़लमना अनफुसाना, कि अब अल्लाह ताला कहता है कि आदम की खूबसूरती ये है कि ये जब कोई गलत चीज़ करता है ये अपने ऊपर उसकी जिम्मेदारी लेता है, कि रब्बाना ज़लमना अनफुसाना, ऐ हमारे रब हमने अपने ऊपर जुल्म किया, व अनफुसाना वग़फिर लाना, कि रब्बाना अनफुसाना वतग़फिर लाना वतरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन, कि हमारी मग़फ़रत करो, हम पे रहम करो, वरना हम नुकसान वालों में से हो जाएंगे। तो ये अल्लाह ताला कहता है कि अब आदम जो इंसान है अब आदमियत की शक्ल में उस स्टेज पे आ रहा है जब ये अपने अमल के लिए खुद को खुद जिम्मेदार ठहराएगा। अब चूंकि वो खुद जिम्मेदार ठहरा रहा है और उसको नहीं पता कि उसने किस रास्ते पे जाना है, अच्छा है, अच्छे और बुरे का उसको पता लग गया कि मैं नुकसान कर रहा हूँ, अब सेल्फ एनालिसिस वो करने के काबिल हो गया, लेकिन अब उसको रास्ता नहीं पता चल रहा। अब वो रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह ताला कहता है फिर मैं वही नाजिल करता हूँ। अब वो वही क्या करती है कि इसको नजदैन देती है, दो रास्ते देती है, फिर वो उस नजदैन में से ये जिसको चाहे कबूल करे, ये चाहे तो ईमान ले आए, चाहे तो कुफ्र करे। अब यहाँ पे अल्लाह ताला कहता है कि ये आज़ाद पैदा हुआ है, इसकी कोई फितरत नहीं है, यानी इसको ये भी नहीं पता कि क्या चीज़ इसको नुकसान करती है, ये तजर्बे से सीखता है, ये आग में हाथ डाल के सीखता है कि ये मेरा नुकसान करती है। बचपन में आपने देखा बच्चों को बचाते हैं, लेकिन बकरी का बच्चा नहीं कभी आग के पास खुद जाता, वो गलती से गिर जाए तो गिर जाए, वो खुद नहीं चाहता। इंसान का बच्चा खुद गलतियां करना चाहता है, पानी में गिरना चाहता है, आग में गिरना चाहता है, उसे हमें बचाना पड़ता है। तो ये चीज हमें साबित करती है कि इंसान किसी फितरत पे पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये न्यूट्रल पैदा हुआ है। और अल्लाह ताला इसका नुक्ता आगाज करता है कि तुम्हारी खसूसियत ये है कि तुम में इल्म हासिल करने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो तुम्हें मलाइका से बरतर बना रही हैं, और तुम्हें बाकी जो तख्लीक है उससे बरतर इसलिए बना रही हैं कि तुम अपना सेल्फ एनालिसिस करके देख सकते हो कि तुमने अपने लिए अच्छा किया या बुरा किया। अब चूंकि तुम ये फैसला नहीं कर सकते कि कौन सा रास्ता ठीक है कौन सा गलत है, इसका फैसला वही करती है। तो इसलिए इंसान को वही की जरूरत पेश आती है कि इंसान उसके मुताबिक अमल करे और फिर देखे कि मैंने जिंदगी में क्या पाया और क्या खोया। और आप ये देखेंगे कि मौजूदा दौर के अंदर जितनी भी खराबियां पैदा हो रही हैं, ये वही पे नहीं कोई भी कौम चल रही। यानी अगर कोई कहता है कि वही की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें साबित करना होगा अपने एक्शन के साथ कि ऐसे तौर तरीके मौजूद हैं कि जो दुनिया में अमन दे सकते हैं, ऐसे रास्ते मौजूद हैं जो दुनिया में इंसानों को आज़ादी दे सकते हैं, जो दुनिया में तौहीद कायम कर सकते हैं। तो ये दुनिया को साबित करना होगा ना। अगर साबित नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हमें एक ऐसे फिनोमिना की तरफ जाना है कि जिसमें अवलियत किसकी है, तौहीद की। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शिर्क जो है वो लाजमी नहीं है कि हमारा बुतों का शिर्क है। शिर्क एक वो भी है जो बुतों पे किया जाता है, और एक फिरौन ने जो अपने कवानीन नाफिज किए हुए हैं, एक वो भी शिर्क है कि वो अल्लाह के कवानीन को छोड़ के अपने कवानीन नाफिज कर रहे हैं। यानी वो लोगों को गुलाम बना रहे हैं, औरतों को शर्मिंदगी की जिंदगी बसर करने में मजबूर कर रहे हैं, जो नौजवान है उनकी सलाहियतों को कत्ल कर रहे हैं। तो ये भी अल्लाह ताला कहता है कि फिरौन का एक जुर्म है जिससे मूसा को निजात दिलाई गई, जिससे आने वाली नस्लों को निजात हासिल करनी होगी, ताकि वो क्या करें, वो उस इक्वेलिटी के ऊपर आ जाए जहाँ पे कोई कौम किसी कौम को अपना महकूम नहीं बना सकती, कोई इंसान किसी को महकूम नहीं बना सकता। तो ये जो यूनिवर्सल नॉलेज है वो हमें वही के अलावा कहीं दिखाई नहीं देता, वरना जो हमारी अपनी जात के अंदर अच्छाई बुराई है वो ठीक है मैं फाइनल कर सकता हूँ, लेकिन उसका बाहर वाली दुनिया को मैंने कैसे उसके साथ मामला करना है वो नहीं हम फाइनल कर सकते। जिसकी वजह से हम देखते हैं दुनिया में तनाजात पैदा हो रहे हैं, फैमिलीज के अंदर तनाजात पैदा हो जाते हैं कि हर बंदा अपनी अच्छाई खुद मुख्तस कर लेता है और खुद अपने लिए उस अच्छाई के ऊपर डट के खड़ा हो जाता है और अल्लाह की अच्छाई को छोड़ देता है, अल्लाह के बताए रास्ते को छोड़ देते हैं, और गलत रास्ते की वजह से वो अपना भी नुकसान करता है, कायनात का भी नुकसान करता है और तमाम मुआशरे का भी नुकसान करता है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जहाँ पर हमें वही की जरूरत पेश आती है। बहुत शुक्रिया मैडम,
थैंक यू। अब देखते हैं कि बाकी जो अफराद हैं क्या राय रखते हैं। डॉक्टर साहब आप कुछ कहेंगी?
अच्छा, हमने ये थोड़ी सी पिछली दफा भी बात की थी कि ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर एक मतलब जो हमारे डिफरेंट तरह के फील्ड्स हैं, फील्ड्स ऑफ स्टडी हैं, तो हम लोगों को इसका कम पता होता है। मुझे खुद भी रिसेंटली ही अल्हम्दुलिल्लाह पता चला है कि एक पूरी फील्ड है हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसफी, या जो एथिकल हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री ऑफ एथिक्स है। तो बेसिकली हमें ये देखना होगा कि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो हमेशा से हर चीज को अच्छा या बुरा नहीं समझते रहे। कुछ चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने हमारे अंदर रखी हुई हैं, जैसे कि आई थिंक अभी कोई भी कल्चर जो है वो झूठ बोलने को, चोरी करने को, और किसी बंदे को स्पेशली अस्तग़फिरुल्लाह कत्ल कर देने को कभी भी कोई भी कल्चर ठीक नहीं कहता। लेकिन इसमें हम तरह तरह की जो है ना वो तौजीहात और तरह तरह के ग्रे एरियाज हम पैदा करते रहते हैं। ह्यूमन माइंड इस तरह का है। तो अब जो हमें देखना होगा, बहुत सारे एस्पेक्ट से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि वही क्या है, वही क्यों जरूरी है। अब देखिए, दुनिया में बहुत सारे लेंसेज हैं चीजों को देखने के ना। फॉर एग्जाम्पल, अब कुछ बायोलॉजिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि बस जो कुछ भी है वो हमारे दिमाग में केमिकल रिएक्शंस की वजह से हो जाता है, इसलिए इवन अगर कोई बंदा जुर्म भी कर लेता है, इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। और बहुत मशहूर एक बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने किताबें भी माशाल्लाह लिखी हैं, रॉबर्ट सिपोल्स्की उनका नाम है। तो वो ये कहते हैं कि आप ठीक है, आप जुर्म करने वाले बंदे को आप सोसाइटी में पार्टिसिपेट ना करने दें आप, लेकिन उसको आप साइड पे कर दें, लेकिन आप उसे मॉरल जजमेंट नहीं आप दे सकते कि उसने कोई बुरा काम कर दिया। बस एक काम हुआ वो उससे हो गया, वो उसके दिमाग में उस वक्त जो भी केमिकल रिएक्शन हुआ, क्योंकि वो केमिकल रिएक्शंस पढ़ते रहे हैं सारी जिंदगी, तो उनको यही लगता है कि हर चीज केमिकल रिएक्शन ही होती है। तो इसी तरह से जो हमारे अच्छाई और बुराई के मयार हैं वो हमेशा सेम नहीं रहते। जैसे हमने पिछली दफा भी बात की थी कि खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना, आप मेरा ख्याल है कि हम इस पे कोई छोटा सा वो उम्फ आगे या जो होता है वो भी हम कर सकते हैं सिटी सेंटर में जाके, कि आप किसी से पूछें कि आप खाना खिलाना चाहेंगे इस होमलेस बंदे को, तो आई एम श्योर कि अगर 10 लोगों से आप पूछेंगे तो उसमें से कम अज कम 3 ये कहेंगे कि नहीं, मैं नहीं इसको खाना खिलाना चाहता क्योंकि ये बंदा काम नहीं कर रहा उठ के, और ये बंदे ने खुद अपना ये हाल किया है, ये ड्रिंक करता है या जो कुछ भी करता है, ये मेहनत नहीं करता। लेकिन एक तरफ हम ये नहीं देखते कि कई लोग अगर मेहनत करते हैं तो उनके पास एक पाथ होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, वो सुबह से रात तक मेहनत भी करता है, लेकिन हमने ये देखना होगा कि उसके पास ऑलरेडी मौके थे मेहनत करने के, उसकी एक स्टेबल फैमिली थी, उन्होंने उसको एजुकेशन दी, उसको सोचने समझने का तरीका दिया, उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वेल्थ थी, तो उस बहुत सारे फैक्टर्स थे जो उसको एक स्टेबिलिटी की तरफ लेकर गए। तो अगर हम ये सारी चीजें देखें तो हम ये चीज देखेंगे कि कई लोग वाकई हमसे कम फॉर्चुनेट होते हैं, और अगर हम ज्यादा फॉर्चुनेट हैं किसी भी फैक्टर की वजह से, बेशक अपनी मेहनत की वजह से, तो हमें लेस फॉर्चुनेट की मदद करनी चाहिए। अब ये एक टाइप ऑफ थिंकिंग है, लेकिन दूसरी टाइप ऑफ थिंकिंग इससे टोटली डिफरेंट है, और वो लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। हर बंदा यहाँ पे, स्पेशली डार्विनियनिज्म जो है, उसमें ये है कि हर बंदा अपने लिए फाइट कर रहा है। अगर वो अपने लिए फाइट नहीं कर रहा और वो अपने लिए फाइट में फेल हो रहा है, तो फिर उसको एलिमिनेट हो जाना चाहिए, या फिर उसको सोसाइटी और उसको जो वो है एवोल्यूशनरी प्रोसेस उसको एलिमिनेट कर देगा। अगर वो नहीं खा पी सकता, वो खुद खाए पीएगा नहीं, कमजोर हो जाएगा, सड़क पे पड़ा रहेगा, ना उसकी शादी होगी ना उसके बच्चे होंगे, तो ही डिजर्व्स दैट बिकॉज ही फेल्ड टू फ्लरिश। तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंकिंग है। अब रिलीजियस माइंड की तरफ आते हैं, अगर हम हमारा अगर माइंड रिलीजियस है, जैसे इंसानों का डेफिनेटली ज्यादातर इंसानों का रिलीजियस इंक्लिनेशन होती है, और अगर वो दीन को और खुदा को नहीं मानते तो वो किसी और तरफ डायरेक्ट हो जाती है, लेकिन होती है हमारी इंक्लिनेशन, उसमें हम देखेंगे कि जाहिर है कि हम मानते हैं कि अल्लाह है, क्रिएटर है यूनिवर्स का, और अगर हम रिलीजियस थिंकिंग के थ्रू चलेंगे तो जाहिर है कि अल्लाह ताला ने ही ईवल भी क्रिएट किया है, इब्लीस का भी एग्जिस्टेंस है। तो जो आइडियाज हैं हम उनको हमेशा ये नहीं कह सकते कि हमें अच्छा ही आइडिया आ रहा है, तो बहुत सारे आइडियाज जो हैं वो इब्लीस के भी होते हैं, बहुत सारी स्कीम्स इब्लीस की भी होती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत कम चीजों पे जो है अल्लाह ताला ने वर्डिक्ट दी है कुरान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये समझें कि बहुत कम चीजें हैं, जैसे हर हर चीज में अल्लाह ताला ने हमें हुक्म नहीं दे दिया कि इस तरह से दांत ब्रश करो और इस तरह से उठ के जो है ना वो सुबह के वक्त ये चाय पिया करो और इतना दूध इसमें डाला करो, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। बहुत कम चीजों पे अल्लाह ताला ने बहुत क्लियर कट हमें इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, हलाल और हराम हमारे लिए क्लियर कर दिए हैं, और वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला के नजदीक हमेशा से इंपॉर्टेंट रही हैं और जब तक कयामत नहीं आती वो इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो उन चीजों में बहुत जरूरी है कि हम वही का, अगर हम अल्लाह को मानते हैं तो फिर हम जाहिर है कि वो एक पूरा, एक हम बचपन में याद किया करते थे कि छठा कलमा होता है ईमान मुफस्सिल का, कि हम अल्लाह को मानते हैं, हम अल्लाह के रसूलों को फिर मानते हैं, किताबों को मानते हैं, फरिश्तों को मानते हैं, और यौम आखरत को मानते हैं, और तकदीर को मानते हैं। तो इसमें फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अल्लाह को मानते हैं तो आप चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को मानते हैं ना, उसमें फिर ये है कि फरिश्ते वही लाते हैं, वो अनकरप्टेड फॉर्म में प्रॉफिट्स तक आती है, और प्रॉफिट्स हम तक वो अनकरप्टेड फॉर्म में पहुंचा देते हैं, वो अपना फर्ज अदा कर देते हैं। अब हमने वही को उसी का उसी तरह मानना है, उसमें हम, ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हम पे सोसाइटी जो है वो सोसाइटी कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रही होती है, वो कभी भी एक फिक्स्ड पैटर्न में नहीं रहती, वो अपनी वैल्यूज चेंज करती रहती है, अपडेट करती रहती है, लेकिन उसमें ये इंपॉर्टेंट है कि हम भी अपनी वैल्यूज करें, अपडेट करें अपने आप को। हम जाहिर है कि हम केव में नहीं रह सकते या जिस तरह से हम कट के नहीं रह सकते, सोसाइटी में ही रहना है, लेकिन हम जो चीजें वही में क्लियर हो गई हैं, जो वही का स्टैंडर्ड अच्छे और बुरे का क्लियर हो गया है, वो हम कभी भी ना छोड़े। बाकी चीजें हम अपनी वैल्यूज को हम देखते रहेंगे, यार अच्छा इस तरह रहना शुरू कर दो, या इस तरह का घर बना लो, या अपने कपड़ों में, ठीक है फॉर एग्जाम्पल जर्मनी में अगर कोई अल्लाह ताला के लिए बुरका पहनता है तो बेशक अल्लाह ताला उसको जजा देने वाला है, और अल्लाह ताला दिलों का हाल जानने वाला है, और वो हर छोटी से छोटी चीज का, अल्लाह ताला कहता है कि मैं शकूर हूं, मैं छोटी से छोटी चीज का तुम्हें जजा देता हूँ। लेकिन अगर कोई मेरी तरह का इंसान है जो थोड़ा सा ज्यादा डरपोक है, तो वो अगर बुर्का नहीं भी पहनेगा, वो अपना कपड़े डिसेंट फॉर्म में, जो हमें पता है कि हमने हमारी ड्रेसिंग का कुरान में क्लियर कट कुछ ड्रेसिंग के असूल आ गए हैं, तो वो अगर हम फॉलो कर लेंगे तो हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है, हमने अल्लाह ने जो कुरान में कहा वो हमने कर लिया, और हमने अपने आप को सोसाइटी में भी रहने के लिए और मूव करने के लिए थोड़ा सा हमने अपने आप को प्रेजेंटेबल बना लिया, तो वो चीज अलाउड है. लेकिन जो कुरान में जो क्लियर कट चीजें आ चुकी हैं, जैसे बहुत कुछ जो हलाल और हराम के कॉन्सेप्ट हैं, वो हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते. और वो इसलिए चेंज नहीं कर सकते कि वो अगर हम वही को मानते हैं तो वही में आ गए हैं. और उनके ऊपर अब जैसे अगर चेंज होते भी रहेंगे व्यूज, और डेफिनेटली सोसाइटी हर चीज के ऊपर अपने व्यूज चेंज करती है, तो वो हम अपने अपडेट नहीं कर सकते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखते रहें कि अब हमें लगता है कि लोग एक ही चीज को अच्छा या बुरा समझते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं, इवन मैंने अभी कहा कि लोग झूठ को बुरा समझते हैं, तो बस ये कह देते हैं लोग कि हाँ झूठ बोलना बुरी बात है. लेकिन आप उनसे कभी डिस्कशन करें तो वो उसमें झूठ की बहुत सारी फॉर्म्स होती है. एक उसमें होते हैं वाइट लायज होते हैं, वो बिल्कुल हार्मलेस और छोटे छोटे ऐसे ही लायज होते हैं जिनका कोई नुकसान नहीं होता, किसी शख्स को उनका कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उनको लोग वो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है. व्हाइट लाइज एक्सेप्टेबल हैं, ग्रे लाइज एक्सेप्टेबल हैं. जैसे कि अब सबसे मजे की बात मैं करूंगी आखिर में, कि पहले ये बात होती थी, आपने भी ये बात की कि फायदा पहुंचाना है लोगों को, और हमने अपने आप को ऐसा इंसान बनाना है जिसका फायदा हो सोसाइटी में और कोई एक अच्छा पार्ट हो सोसाइटी का. लेकिन अब सोसाइटी ये बात कभी भी नहीं करती. आपने, मेरे ख्याल है, मेरा माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा बेटा स्कूल जाता है, तो मैंने ये बात कभी भी नहीं सुनी कि सोसाइटी में कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा बनना है. अब यहां तक हम आ चुके हैं. अब आजकल हमारी यहाँ पे बाउंड्री है कि कोशिश करो कि जो कुछ भी करो किसी और को नुकसान ना हो, और अगर उसको नुकसान हो रहा है तो उसे पता हो कि मेरा ये नुकसान हो रहा है. तो मतलब कि यहां तक सोसाइटी आ चुकी है कि आप कंसेंट के साथ आप जो मर्जी करें. अगर दो लोग या तीन लोग किसी चीज पे कंसेंट कर रहे हैं और वो फॉर एग्जाम्पल वो जुआ खेल रहे हैं, तो ये उनकी मर्जी है. मतलब इसमें उनको आप कुछ नहीं कह सकते कि वो गलत काम कर रहे हैं, ठीक. वो तीनों इस बात पे राजी हैं कि जो भी लॉस होगा प्रॉफिट होगा, हम उसके ऊपर अग्रीड है कि होगा. तो इसीलिए हम इस बारे में हमें ज्यादा सोचने की और आई थिंक इल्म हासिल करने की जरूरत है कि अच्छाई और बुराई के कॉन्सेप्ट्स कभी भी एक जैसे नहीं रहते और ना ही आइंदा रहेंगे. चेंज होते रहेंगे कॉन्सेप्ट्स, और हम भी अपनी कुछ वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने कुछ नजरियात को चेंज कर सकते हैं. पर्सपेक्टिव्स को इंसान को चेंज करना पड़ता है, वरना वो जिंदगी नहीं गुजार सकता ना जिंदा रह सकता है. लेकिन हम वही पर, अल्लाह ताला ने जो वही में क्लियर कर दिया उस पर हम क्लियर रहें. तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो वही में आ गया, जो कुरान में आ गया है, उसके ऊपर हम क्लियर रहें, और बाकी चीजों को हम जो है वो बहुत ज्यादा ठोक बजा के देखें और फूंक फूंक के कदम रखें. तो बाकी अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला रहम का
जजाक
मामला फरमाए. आमीन. थैंक यू.
अल्लाह. आज नूर भाई आप कुछ
अच्छा,
कहेंगे?
मैं भी मुख्तसर सा इनपुट दे देता हूँ. जहाँ तक मेरे कुरान का मुताला है, इंसान की जो अकल और फितरत है, कुरान ये बार बार कहता है कि वो यानी इसकी तमीज कर सकते हैं, इनकी क्या अच्छाई है क्या बुराई है, उसको अल मारूफ और मुनकर से ताबीर करता है. लेकिन वो बड़ी बड़ी उसूली चीजें हैं, यानी जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि झूठ बोलना है, या मसलन किसी को धोखा देना है, किसी का हक खाना है, किसी को नुकसान पहुंचाना है, ये जाती तौर पर जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, इंसान बड़ी आसानी से इस तक पहुंच सकता है. और इंसान को अल्लाह ने ये भी सलाहियत दी है कि जो उसूल होते हैं उसी उसूल से इंसान मसलन बाकी कोई नई चीज भी निकलती है तो उस पर भी वो फैसला किसी हद तक कर सकता है कि ये चीज इसके यानी ममासिल है, इसी जैसी है, तो ये भी गलत होनी चाहिए, यानी ये ठीक नहीं होनी चाहिए, इंसान कर सकता है इसका फैसला. कुरान ने तो असल में ये जो सवाल है इसका बड़ा वजाहत से खुद भी जवाब दिया हुआ है, यानी कि वही की जरूरत की हुई है, क्योंकि कुरान खुद वही है, तो जाहिर बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जवाब कुरान ने दिया हुआ है. तो जिस तरह कुरान पहले ये फरमाता है कि बस इंसान को अल्लाह ताला ने इल्हाम किया हुआ है उसकी फितरत में, फाल हम है फजू रहा हुआ तकवा हानि, तो ये भी वही उसूली चीजें हैं कि अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमा दिए. लेकिन उसूली चीजें जो अल्लाह ताला ने इल्हाम फरमाई उसमें एक ये भी है कि एक अल्लाह का तस्वर है, अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में इल्हाम फरमाया हुआ है, और एक आखिरत का तस्वर है कि इंसान इंसान की फितरत में ये चीज है कि इंसान मरेगा तो उसके बाद कुछ ना कुछ होना चाहिए, यानी ये दुनिया ऐसे ही खत्म नहीं होनी चाहिए कि इसमें कुछ भी हो रहा है, कोई किसी के साथ भी जुल्म कर रहा है तो वो इसी तरह से गुजर जाए सब कुछ, इंसान ये चाहता है. और इंसान यानी ये बड़ी इंसान की फितरती चीज है, तो ये सब कुछ तो है. इसी वजह से हम देखते हैं कि जितने भी मजाहब है उसमें तो ये तस्वर है ना, किसी किसी हद तक हिंदू मजहब है, जो भी मजहब है ना, वो मसलन अपना एक जन्नत के ममासिल कोई और वर्ड यूज करते हैं, जन्नत और दोजख के दूसरे. जो लोग मजहब को नहीं मानते वो भी किसी हद तक ये इस तरह चीजों को करते हैं. मसलन ये इंसान की इतनी शदीद जरूरत है कि अगर देखा जाए तो मसलन ये जो लोग हैं, मसलन जो जो फिल्म इंडस्ट्री है, इसमें भी अगर हम देखा जाए तो वो इस तरह की दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं कि मसलन इसमें कोई तकलीफ ना हो, किसी को मसलन किसी के साथ जाती ना हो, तो इस तरह की चीजें, क्योंकि इंसान की फितरत में ये चीज, तो उसको वो किसी ना किसी तरीके से बाहर निकालता है। इंसान ये चाहता है कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे किसी को एक तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसको अल्लाह ताला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून से ताबीर करता है क़यामत के हवाले से। तो मेरे ख्याल में दीन को जब हम देखते हैं तो आखिरत के हवाले से ज्यादा देखना चाहिए, बजाय इसके कि दुनिया के लिहाज से हम देखें, क्योंकि दुनिया को हम उस तरीके से परफेक्ट कर ही नहीं सकते, इसका इम्कान नहीं है, क्योंकि आप सब लोगों के एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह पे नहीं ला सकते ना सब कुछ। यहाँ पे होंगे जुल्म भी होगा, यहाँ पे बेइंसाफी भी होती है, यहाँ पे उसके बावजूद के लोगों को समझ होती है। अब ये चीज में जो है कि मसलन इंसान फितरती तौर पर समझते हैं, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मसलन लोग ग्रे एरियाज निकाल लेते हैं बीच में ना, जूट के भी छोटे छोटे के, खैर, लेकिन वो ग्रे एरिया अपने लिए निकालते हैं, दूसरों के लिए नहीं निकालते। अगर आपके साथ कोई जूट बोले कि वो ग्रे एरिया में भी करेगा तो आप बहुत नाराज होंगे कि क्यों इस देश से किए, तो ग्रे वो वैसे उसकी तावीलात करेगा कि ये मैंने जूट इस वजह से बोले, हम ये बात आपकी बेहतरी के, मैंने ये बात करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, लेकिन अगर आपको पता चलेगा तो आप नाराज होंगे। वो क्यों होंगे? क्योंकि आपकी फितरत में ये चीज है कि ये गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो ग्रे का जो लोग इसी वजह से निकालते हैं, ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं होती, उसको समझ होती है, सोसाइटी को समझ होती है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो अपने लिए, क्योंकि वहां उसको जरा सा फायदा नजर आ रहा होता है, दूसरे का अगर थोड़ा सा नुकसान भी हो रहा होता है तो वो कहते हैं चलो बोल देते हैं कोई मसला नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, तो वो अपने फायदे के लिए देखते हैं। तो ये फितरत इसी को बोलते हैं, अल्लाह ताला यही कहते हैं कि इंसान को पता है अंदर से उसका वो जमीर उसको थोड़ा सा कहता है कि ये चीज ऐसी नहीं है, लेकिन वो चलो कोई ग्रे एरिया निकाल लेते हैं बीच में। तो फिर अल्लाह ताला इसका ये जवाब देते हैं कि रुसुलन मुबशरीन व मुनजरीन लअल्ला यकून लिन्नास अलल्लाहि हुज्जतुन बादर रुसुल वकान अल्लाह अजीजन हकीमा। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सूरह निसा में मुख्तलिफ अंबिया को अल्लाह ताला ने जिक्र किया, मैंने वही मुख्तलिफ अंबिया पे नाजिल किया, वो उसमें बड़े बड़े जो पैगम्बर है उनका जिक्र भी किया, उसके बाद ये आए, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसी तरह मैंने वही की, इन्ना ओहैना इलैका कमा ओहैना इला नूहिन व नबीयिना मिन बादी। अल्लाह ताला पैगंबर से फरमाते हैं कि मैंने आपकी तरफ ऐसे ही वही की जिस तरह दूसरे पैगंबरों की तरफ वही की, फिर उसके बाद मुख्तलिफ पैगंबरों का जिक्र आता है, उसके बाद अल्लाह ताला नेक्स्ट आयत में कहते हैं कि रुसुलन मुबशरीन व मुनजरीन, अल्लाह ताला ने मैंने अंबिया को नाजिल किया, रसूलों को नाजिल किया कि वो बिशारत देने वाले हों और इंजार करने वाले हों, कि इसके बाद अल्लाह ताला पे कोई यानी हुज्जत बाकी ना रहे, लोगों के लिए कोई बाकी हुज्जत ना रहे। तो ये एक एक्स्ट्रा दलील बन जाती है, एक तो अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में एक शहादत दे दी है ना, एक फितरती दलील है, और दूसरा अल्लाह ताला ने अकल दे दी इंसान को, उससे भी वो फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये तीसरी चीज अल्लाह ताला ने ये भी कर दी कि अंबिया को भी नाजिल कर दिया, फिर ये कि जब हम इस चीज को अकली तौर पर फितरती तौर पर समझ जाते हैं कि एक आखिरत का दिन आना है जिसपे हमारे सारे हिसाब किताब होना है और अल्लाह ताला की एक जात है, तो इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली ये भी तकाजा पैदा हो जाता है कि हम इसको समझे कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई है तो अब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हमें क्या क्या करना है, जो तफसील होती है उसकी जो तफसील होती है, तो उस पर फिर अल्लाह ताला जो है वो तफसील, बाज औकात इंसान ऐसा है कि वो उनमें वो गलती कर सकता है जो दीन की तफसीलात वगैरह है उसमें होती हैं। तो इसकी एक वाजी मिसाल मैं दे देता हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में मसलन फरमा भी दिए कि जो बड़ी गलती एक हो सकती थी ना इंसान के, यानी अल्लाह ताला जिस समय पे उस दिन भी जब हम सेशन कर रहे थे फरमाया था कि दीन का जो मकसद है वो तज़किया है ना, इंसान अल्लाह ताला इंसान की पाकी चाहता है कि वो खुर्दनोश में भी उसकी पाकी होनी चाहिए, उसके बदन भी पाक होना चाहिए, उसकी उसकी सोच भी पाक होनी चाहिए। तो खुर्दनोश में एक ये चीज़ है कि मसलन जिस तरह अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया ना खिंजीर का जिक्र कर दिया, बहुत से लोग सब मुख्तलिफ उसकी तावीलात करते हैं कि उसका जिक्र क्यों आया, लेकिन उसका जो मेन चीज़ है वो यही है कि ये एक मुतशाबे जानवर था ना, ये ग्रे जानवर था, ग्रे ऐसा था कि इसमें इंसान जो है ना बड़ी सतह पे गलती कर सकता था कि इसको खाएंगे, और ये ऐसी चीज थी कि क्योंकि इसका अगर आप देखते हैं इसकी जो नस्ल है वो हम देखते हैं कि ये बकरी की नस्ल की टाइप का चीज है ना, ये घास भी खाता है, लेकिन साथ साथ इसका एक मसला बड़ा ये है कि ये गोश्त भी खाता है, तो इसमें वो जो दरिंदगी वाला आंसर है वो है, तो अल्लाह ताला नहीं चाहते कि हम ऐसी चीजें खाएं जो दरिंदगी सिफती हो, मसलन बिल्ली जिस तरह है, जिस तरह शेर वगैरह है जो चीर फाड़ के खाते हैं, गोश्त खाते हैं, तो अल्लाह ताला ने चाहते इसे कुरान हमें ये सबक देता है कि इससे इंसान में भी ये सिफत पैदा हो सकती है किसी हद तक ना, यानी उसमें उसके उसकी फितरत पे असर पड़ सकते हैं। तो जो जो ये चीज एक मुतशाबे जानवर था जो जिसमें इंसान मिस्टेक कर सकता, उसमें इंसान ने मिस्टेक की। अब देखिए कितनी बड़ी सतह पे लोग ये गोश्त खाते हैं, क्योंकि ये फितरत में तो इंसान को पता है कि क्या क्या चीज खानी है हमने, लेकिन ये कि ये चीज ये मिस्टेक हो सकती, तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे रहनुमाई कर दी। इस तरह और छोटी इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं बाज के उसूली तौर पे, तो इंसान को पता है कि इस तरह नहीं करना, लेकिन इसमें आ जाता है। एक मसलन इंसान तिजारत करता है, इंसान ट्रांजेक्शन वगैरह करता है, तो इसमें किया आ जाता है कि जो बड़ी चीज थी जो कुरैश जिस वक्त कुरान नाजिल हो रहा था उन्होंने किए थे कि वो ये जो सूद पे कर्ज देते थे ना, कर्ज एक बहुत अच्छा अमल है, आप किसके साथ हेल्प करते हैं, तो इसमें ये कि उन्होंने इसको एक कारोबार की सूरत दे दी थी कि चलो ठीक है हम देते हैं, लेकिन हमें भी थोड़ा सा मुनाफा मिलना चाहिए वापस ना। तो इस पे इंसान मिस्टेक करते हैं, मिस्टेक उसने उन्होंने एक कारोबार की शक्ल उसको दे दी, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पे वजाहत कर दी कि नहीं ये तो जुल्म है, आप किसी के जब आप नेकी करते हैं तो आप उस पे फायदा नहीं ले सकते हैं, नेकी को नेकी की तरह ही रहना चाहिए, तो इसको आप कारोबार की शक्ल नहीं दे सकते। लेकिन यह इंसान ने मिस्टेक की है, और अभी तक ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, देखें कि आजकल के दौर की भी बड़ी मिस्टेक यही है, यानी जो जिससे सारा निजाम चल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फरमा दिया था, इसकी वजाहत कर दी। लेकिन ये इसमें इंसान खुद अपनी अकल से गलती कर सकता है, क्योंकि इंसान ऐसा है बाज़ औक़ात गलती करता है अपने फायदे के लिए, बाज़ औक़ात ऐसी चीजें करता है। तो अल्लाह ताला ने इस तरह छोटी छोटी चीज और भी कुरान में बहुत ज्यादा है कि जिस इंसान मिस्टेक कर सकता था या कर रहा था उस दौरान में, तो अल्लाह ताला ने उसमें रहनुमाई फरमा दी। लेकिन जनरल जो उसूली चीजें हैं वो अल्लाह ताला ने कुरान में दोबारा भी फरमा दी, और अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में भी ये वदियत की थी ये चीजें कि जो जो गलत है। और इसके अलावा जो मसलन दीन का बड़ा तकाजा हमसे ये है कि हम देखते हैं कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक किस तरीके से कायम होगा, उसमें भी उसकी जो तफसीलात इंसान को नहीं पता होती कि हमने किस तरह यानी इबादत करनी है, अल्लाह ताला हमसे क्या चाहते हैं, हमने इबादत किस तरीके से करनी, तो अल्लाह ताला ने उसकी तफसीलात फिर वही के जरिए इंसान को पहुंचा दी। ये मेरी इनपुट थी छोटी सी, जजाक अल्लाह खैर।
मेरा फिर सवाल ये है कि इसका देखें ना, जो मगरिब ने इसका हल निकाला है, इंसान अच्छाई बुराई की किसी अपने बाउंड्री में तो तमीज कर सकता है ना, कि अपने मेरे लिए क्या अच्छा है मेरे लिए क्या बुरा है, बुनियादी शऊर उसके पास मौजूद है और कवानीन बन जाए। देखें जो मगरिब का आजादी का तस्वर है वह यही है ना कि अपने लिए तो इंसान अच्छाई बुराई की तमीज़ कर सकता है, लेकिन जैसी माशरे की बात आएगी तो उसके लिए हम कवानीन बना लेते हैं, तो मसला तो खत्म हो गया, फिर वही की जरूरत कैसे रह गई फिर?
असल में इसमें बड़ी चीज हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो ये कि जो दीन का जो मेन मकसद है ना वो ये दुनिया है, जिस तरह मैंने पहले फरमाया ना, असल में मसला ये बनता है कि जब हम बिल्कुल दुनिया परस्त हो जाते हैं ना फिर ये प्रॉब्लम आती है। तो मैं जो इंसान की जो सबसे बड़ी इस दुनिया की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना वही है कि इंसान का पता नहीं है कब उसने मर जाना है ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंसान, इस पे इंसान काबू नहीं पा सकता है, ये बहुत बड़ा मसला है इंसान का कि मुझे मौत आनी है। तो असल मसला तो इंसान का मौत है। कुरान जो है ना कि दीन जो है ना वो हमें इस बड़े प्रॉब्लम से खबरदार, जिसे मैं फरमाया पैगम्बर जो है बिशारत देने वाले हैं और इंसान इंतजार करने वाले हैं ना, वो आते इसीलिए कि बिशारत दें उन लोगों को जो मसलन सही राह पे चलते हैं, और फिर इंतजार करें उन लोगों को, इंतजार करें उन लोगों को जो सही राह से हट जाते हैं ताकि उनको भी सही राह पे ले आए। तो ये पैगम्बरों का मेन मकसद होता है, और वही भी तकरीबन इस वही की शक्ल भी तकरीबन ऐसे ही होती है। अल्लाह ताला कुरान में बार बार फरमाते हैं ना कि इनको खबरदार कर दो, इनको खबरदार कर दो, पैगंबर भी आते हैं, जितने पैगंबरों के किस्से पहले आते हैं, रसूलों के किस्से आते हैं, वो बार बार अल्लाह फरमाते हैं कि उन्होंने उनको अपनी कौमों को खबरदार किया। तो असल मसला तो इंसान का मौत का है, ये बहुत ये असल में यहाँ पे इंसान गलती करते हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ इस दुनिया को देखते हैं, अल्लाह को इक्वेशन से निकाल देते हैं और अपनी मौत के बाद जो हमारा असल मसला है उसको निकाल देते हैं, फिर इस तरह के सवाल ज्यादा पैदा होते हैं कि मसलन इसका मकसद क्या है। असल में तो मकसद हमारा आखिरत होना चाहिए ना, कि इंसान ने जब मर जाना था उसके बाद उसने एक जगह जाना है, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत मुख्तसर है, 60-70 ईयर्स की है, और इंसान को अल्लाह ताला ने जैसी चीज दी है फितरत ने कि वो नहीं चाहता कि वो मरे कभी भी, कभी मरे, तो अल्लाह ताला ने वो जो उसका मसला है कि वो नहीं चाहता कभी भी मरे उसको हल किया है दीन के जरिए से अल्लाह ताला ने। उसके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान पाक इख्तियार करे, उसके लिए अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान किसी के साथ ज्यादती ना करे और उस तरह की जिंदगी गुजारे जिस तरह अल्लाह ताला इंसान से चाहता है। तो ये तो दुनिया का बड़ा मसला, फिर मैं कि दुनिया को उस तरीके से बना ही नहीं सकते हैं जिस तरह से इंसान चाहता है, वो आखिरत ही है, जो चीज इंसान चाहता है ना, वो भी इंसान की बड़ी सख्त ख्वाहिश होती है ना कि ऐसा माशरा बन जाए जहाँ पे कोई भी जुल्म ना हो, कुछ भी ना हो, इंसान की सख्त ख्वाहिश है। वो ख्वाहिश भी अल्लाह ताला ने फितरत में उसी जन्नत के उसूल के लिए रखी हुई है कि इंसान उसका उसूल कर, क्योंकि यहाँ पे इंसान ने अपनी हिस्ट्री से सीख लिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हर दौर में ऐसा कभी नहीं हो, कुछ दौर ऐसा नहीं आया कि उसमें ऐसा माशरा बना। पैगम्बर आते थे, जो बड़ा वाक्या है इस दुनिया का मसला, आखिरी पैगम्बर जब आए वो दुनिया से गए तो हम देखें कितना वक्त गुजरा कि उसके बाद से मुसलमानों के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं हुआ ना। अगर हम देखा जाए तो जिस तरह करबला के वाक्य से पहले जो हम देख रहे हैं कि सिफीन के जंग, सिफीन वगैरह जो हुई, जंग जमल वगैरह जो हुई, मुसलमानों के अपने माँ बाएंगे इस तरह की गलत फहमियाँ पैदा हो जाती, क्योंकि दुनिया का हकीकत यही है, दुनिया की बहुत बहुत बड़ा मसला है। इंसान ऐसा नहीं कह सकते, हालांकि वो बेहतरीन लोग थे, हम जिनकी बात हम करें वो बेहतरीन लोग थे, यानी वो ऐसा नहीं था कि वो दीन को नहीं समझते थे या इस तरह नहीं, या उनको उसूल का नहीं पता था, कानून का नहीं पता था, उनको पता था कि अल्लाह ताला किस उसूल से किस कानून से चाहते हैं कि वो जिंदगी बसर करें। लेकिन ये दुनिया की अपनी कमजोरियां हैं इस जगह की, यहाँ आप ऐसे नहीं कर सकते सबको प्लेटफॉर्म पे लाए और यहाँ पे एक अच्छी सी जन्नत बना ले, वो हो ही नहीं सकता। तो वो उसी उसूल के लिए इंसान को वही अल्लाह ताला इसने किया। अभी खबरदार और बिशारत उसका मकसद क्या, वो इस दुनिया की नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों को पैदा हुई कि पैगम्बर इस आप अच्छे काम करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सी यहाँ पे छोटी सी जन्नत मिल जाएगी, आपने मरना है।
आपकी बात की तफसील अगर मैं यूं बयान करूँ कि इसका मतलब ये हुआ कि बेशक इंसान अपने शौरी तौर पर अपने ज़ात के लिए जो ज़ाहरी अच्छाई और बुराई है, ज़ाहरी के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो कर सकता है, और अपने दायरों में भी, माशरती दायरों में भी, फ़र्ज़ किया वो कम्यूनिटी है या मुल्क है या सूबा है, जो भी है, जो नज़म है, उसमें भी वो फैसले कर सकते हैं। लेकिन ये कि जो चीज़ उस दायरे से बाहर होगी उसके लिए जो वो फैसला करेंगे वो फिर उनकी ख्वाहिशात पर चला जाएगा। यानी अपने बारे में तो हर बंदा प्रोटेक्टिव है, खा वो ज़ात है या ख़ानदान है या माशरा है या मुल्क है, लेकिन जैसे ही मामला दूसरे ममालिक के साथ हो जाता है या दूसरे कम्यूनिटी के साथ हो जाता है या दूसरे ख़ानदान के साथ हो जाता है तो वहाँ पे इंसान का तवाज़न जो है ना फिर अपने तरफ ढल जाता है। और इसकी मिसालें हम देख रहे हैं, अभी भी दुनिया में देख रहे हैं कि जो जुल्म है दुनिया में, तो वजह से तो नहीं हो रहा कि इंसान को पता नहीं है कि कत्ल करना जो है ना, हर बंदा समझता है कि कत्ल करना ठीक नहीं है, खून बहाना ठीक नहीं है, लेकिन कत्ल भी हो रहे हैं, जंगें भी हो रही हैं, नाइंसाफियाँ भी हो रही हैं। तो वो ये नहीं है कि इंसान को पता नहीं है, बल्कि वो इसलिए है कि इंसान जिस भी दायरे में होता है वो उसी दायरे के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है और बाहर के दायरे में जो है ना देने वाला कम है, जिसका इन्फाक का बताया गया है ना कि अपने से अपने में से बाहर दो या बाहर का ख्याल करो या एम्पैथी रखो। कुरान की तलीम तो यही है और यही मतलब इससे यही नतीजा निकलता है ना कि हम एज अ इंसान, क्योंकि इमोशनल ह्यूमन बीइंग हैं और शऊर रखते हैं और आज़ादी रखते हैं, हम दूसरों के बारे में इतने फेयर नहीं हो सकते हैं जब तक के एक पाबंदियां हमारे पास ना हो। तो कानून भी तो पाबंदी डालता है ना, तो जब कानून पाबंदी डालता है एक खास माशरे में, खास मुल्क में, तो एक जो कुल्ली पाबंदी है जो खुदा की तरफ से आ रही है वो भी तो उसी की तमसील है, और वो उस तख्लीक उस खालिक की है जिसने इंसान को बनाया। जिस तरीके से पहले फराज भाई ने कहा ना कि जो खालिक है वो असल में चीज़ों की ज़्यादा इलम रखता है क्योंकि वो उसका इहाता किया हुआ है। अगर वो एक फैसला करेगा तो लाजमी बात है वो सब सबके लिए यकसा होगा क्योंकि सारी मखलूक उसके लिए बराबर है। इस बारे में मजीद कमेंट अगर कोई करना चाहता है, डॉक्टर साहब आप बोलना चाहती हैं इस पे?
और भाई आपने माशाल्लाह ठीक बताया है, अल्लाह ताला अपनी बेशक हिकमत बहुत ज्यादा, ये कुरान में भी आता है कि अल्लाह ताला की हिकमत और जो विजडम है वो कम्प्लीट है। तो एक तो ये बात है कि जब हम ईमान लाते हैं अल्लाह की ज़ात पे तो फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हम अकले कुल नहीं हैं, और ये बात हमारे सामने आती भी रहती है और मतलब कि बहुत क्लियर हो जाती है जब हम साइंस पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि एक प्रोसेस है जो कि चले जा रहा है। मेरा ख्याल है अब जो इंक्वायरी का प्रोसेस है वो जब से ह्यूमन बींग्स इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे आए हैं तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं। तो आई थिंक साइंस तो बहुत हम्बल करती है, मुझे तो हमेशा साइंस पढ़ के यही लगता है कि हमें कुछ नहीं पता। जब भी मैं कोई नई चीज़ पढ़ती हूँ तो यही फील होता है कि अच्छा कुछ नहीं पता, और वो खुद भी यही कहते हैं कि हम कॉन्स्टेंटली एक सफ़र पर हैं, हमें कुछ भी चीज़ हमारे लिए वो नहीं है कि एंड है। तो फिर जब ईमान है अल्लाह की ज़ात पे तो फिर जाहिर है कि हमारा थिंकिंग प्रोसेस ये होगा कि अल्लाह ताला की जो विजडम है वो कम्प्लीट है, और इसीलिए जो बात जो हुक्म है वो उसकी कंप्लीट विजडम के थ्रू है की वजह से है, और दूसरा मैं अपने से ये कह रही हूँ, मतलब मैं एज अ स्कॉलर या एज अ नॉलेजेबल पर्सन ये नहीं कह रही, लेकिन आई थिंक वही जो है वो अल्लाह ताला का इंसान के साथ वो ताल्लुक है, कि सब मिशन का एक ताल्लुक है, कि बस अल्लाह ने हमें बनाया है तो हमें उसकी बात माननी है. मतलब आई थिंक ये हमें ये चीज अचीव करनी है कि ठीक है जो कुछ भी है हम बहुत कुछ कर सकते हैं. आदम और हव्वा भी पूरी जन्नत में जा सकते थे, बस एक दरख्त नहीं खा सकते थे. इसी तरह हम भी दुनिया में लिटरली जो चाहें कर सकते हैं, और अपने आप को अगर हम बहुत ज्यादा अकल से चलें और हमारे पास रिसोर्सेज भी हों, तो हम अपने आप को बहुत कुछ करने के बावजूद हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं. लेकिन वो फिर उस वो बात नहीं होगी कि हमें अल्लाह ने बनाया है, उसने हमें तख्लीक किया है, और जो हमारा उसके साथ रिश्ता है वो यही है, वो सब मिशन का रिश्ता है, वो क्वेश्चनिंग का रिश्ता नहीं है. तो मतलब ये फिर दूसरी तरफ बात चली जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें एक बात कोट करना चाहूंगी कि शहाबनामा जो है वो मैंने पढ़ा था काफी साल पहले. बहुत सारे लोगों को उनका पता होगा, कुदरतुल्लाह शहाब एक ब्यूरोक्रेट थे और वो अक्सर अपनी और अपनी वाइफ डॉक्टर रिफत के बारे में लिखा करते थे. तो उन्होंने एक वाक्या लिखा था, और उस वक्त वो मुझे बहुत मुझे चिढ़ हुई थी उनकी इस बात से. तो उन्होंने लिखा था कि हम फ्रांस में एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे, तो वो वेटर आया और उसने कहा कि अच्छा आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप स्वाइन क्यों नहीं खाते, आप सुअर क्यों नहीं खाते ना. तो डॉक्टर रिफत ने कहा कि मैं सिर्फ सुअर इसलिए नहीं खाती बिकॉज मेरे अल्लाह ने मना किया है और कुरान में आ गया कि ना खाओ, तो मैं सिर्फ इसलिए नहीं खाती. वो थोड़ा हैरान हो गया, और मतलब वो मेरे ख्याल है वो भी थोड़ा सा वो हुआ होगा कि अच्छा ये किस तरह की बात है. तो मुझे भी उस वक्त बहुत चिढ़ हुई, मैंने सोचा कि कहना चाहिए था कि इससे बहुत बीमारियां फैलती हैं और ये होता है और वो होता है. लेकिन अगर आप इसकी भी डेप्थ में जाएं देखें, सबसे ज्यादा एक तो चीपेस्ट मीट जो दुनिया में अवेलेबल है वो यही है, और मतलब कि और बीमारियां भी अगर हम कहें तो बीमारियां बाकी चीजों से भी बहुत ज्यादा लगती हैं. और मतलब कि वो भी अगर आप इसको कर लें कि अच्छा हम बहुत अच्छा फार्म कर रहे हैं, हम बीओ ले रहे हैं ये वो, तो उसमें आप बंदा कह सकता है. लेकिन वाकई ये बात है कि अगर हम कहते हैं हम अल्लाह को मानते हैं, हम वही को मानते हैं, तो फिर हम सिर्फ इसीलिए नहीं खा रहे कि अल्लाह ने मना किया है, वरना मेरा ख्याल है कि और कोई रीजन नहीं होगा, क्योंकि ये सबसे सस्ता. सब मुझे तो हंसी इस बात पे आती थी कि जो लोग कुछ भी बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो पोर्क अफोर्ड कर सकते हैं. तो अल्लाह ताला हमें हिदायत दे और अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, आमीन. लेकिन आई थिंक यही रीजन है कि हमें सबमिट करना है अल्लाह ताला को. अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू.
बात करनी है तो बात कर सकते हैं, वक्त भी हमारा काफी ज्यादा हो गया है। अगले सेशन का सवाल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये सवाल है आया हुआ, ठीक है। इस पे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को इंडिविजुअली भी भेज दूंगा जो लोग हिस्सा लेना चाहते हैं डिस्कशंस में। सवाल ये है कि अगर तकदीर लिखी हुई है तो फिर इम्तिहान कैसा होगा, ठीक है। इसको इंशाल्लाह देखेंगे अगले सेशन में। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने वक्त निकाला, जो देख रहे हैं माशाल्लाह लाइव लोग, उनका भी शुक्रिया। प्रोग्राम थोड़ा हमारा आज लंबा हो गया था क्योंकि सवाल ही ऐसा था डिस्कशन वाला ना, तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने, मुबशरीन ने, जिन लोगों ने वक्त निकाला। अल्लाह ताला हमें कुरान की समझ दे और अल्लाह वही की समझ अता फरमाए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे घरों को मुनव्वर करे अल्लाह ताला के कलाम से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से। वमा अलैना अलबलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्लाह अल्लाह।